الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اپنے دل کی گہرائیوں سے کہیے یہ جملے. یہ دعا بھی ہے اور دل کی پکار بھی ہے. جب تک آپ اور میں اس چیز کو اپنے دل پر نہیں لیں گے, ہم کبھی بھی آج کے اس دن کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. زندگی رہی تو آج ہم یہاں پہ موجود ہیں, اپنے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے, اس کو سننے کے لیے. ذرا سا چند لمحے کے لیے سوچئے, پچھلے رمضان سے لے کر آج تک کتنے ہی مواقع ایسے گزرے کہ میں ہونے سے نہ ہوتی. ممکن تھا نا؟ امیجن کیجئے. کوئی بیماری آئی آپ کو اس پورے وقت کے دوران؟ کوئی آپ کو اس پورے عرصے کے دوران سفر کرنا پڑا؟ جہاز میں, گاڑی میں جا سکتے تھے اس میں سے؟ آپ نے کسی حادثے کی خبر سنی؟ ہمارا بھی ہو سکتا تھا. اور کچھ بھی نہ کیا ہو تو اس پورے سال میں کتنی دفعہ کھانے کے لقمے لیے اور وہ لقمہ ہماری سانس کی نالی کے اوپر سے گزر کے گیا اور ہم بچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ من طال عمرہ, جس کی عمر دراز ہو اور وہ اچھے عمل کرے, یہ خوش قسمت ترین انسان ہے. تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہمیں مل چکا ہے, وہ سب کچھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے زندہ رکھا. اور اس سے بڑا مقصد کیا ہے کہ وما یعبدو الا اللہ, اللہ کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. آپ کا میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اور اس کے آگے جھکنا, یہی ہے زندگی کا بڑا مقصد. نمازیں اس مقصد کی یاد دہانی ہے, روزے اس مقصد کی یاد دہانی ہے, صدقہ و خیرات, حج, عمرہ, اور اس سے ملتی جلتی ہر وہ چیز جو آپ اور میں دین کے نام پہ کرتے اور سنتے اور سناتے ہیں, یہ سب کچھ اس مقصد تک پہنچنے والی چیزیں ہیں جو ہمیں مقصد تک پہنچاتی ہیں. اگر آپ نے میں نے اپنی زندگی کو اس مقصد کے ساتھ جوڑ دیا ہے نا, تو پھر آج کا یہ دن آپ کی زندگی کا ایک نیا دن ہے. میں اس وقت اپنے وہ سارے پیارے ساتھی جو ایز اے نیو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ, گیسٹ, لسنرز سن رہے ہیں یا پھر بعد میں اس کو کچھ دیر کے بعد سنیں گے, میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں. مرحبا. آپ کا میرا زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے, جو کئی سال یا پھر ایک آدھ سال سے دورے قرآن کرتے اور کراتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں, لیکن میرے لیے اس وقت سب سے اہم آپ میں سے ہر ایک وہ پرسن ہے جو پہلی دفعہ دورے قرآن کی نیت کر کے بیٹھا ہے. اور یہ پہلا رمضان ہے جو کہ انسان کو اپنی زندگی میں خیر کیسے دیتا ہے. آج صبح ایک شیئرنگ ملی, میں اپنی بات شروع کرتے ہوئے ہی آپ کو وہ سنا دیتی ہوں کہ یہ قرآن کا سفر کیسے زندگیوں کو بدل دیتا ہے. اور یہ میری نہیں, کسی ایک ان ساتھی کی دل کی پکار ہے جن کو پچھلے سال میں پہلی دفعہ یہ موقع ملا. ایز اٹ از پڑھوں گی, آپ سنیے. یہ لکھتی ہیں کہ جب کبھی کہیں آپ کو موقع ملے, اسٹوڈنٹس کو میرا پیغام دیجئے گا کہ میں 47 سال کی ہوں. میری پیدائش کے دن سے آج تک اللہ تعالیٰ بھی وہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا کلام بھی وہی ہے. سوچئے ذرا, اللہ تعالیٰ کی کائنات بھی وہی ہے. ویسے ہی صبح ہوتی ہے, ویسے ہی شام, ایسے ہی پھول کھلتے اور موسم بدلتے ہیں. کائنات میں کچھ بھی نہیں بدلا, لیکن میرے لیے سب بدل گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کلاسز کے ذریعے, 2020 کے دورے قرآن کے ذریعے اور خصوصاً اب اسماء الحسنیٰ کی کلاسز کے بعد, اللہ تعالیٰ نے میرا دل بدلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے میری بصارت کو بصیرت میں تبدیل کر دیا, مجھے تبدیلی کے پروسیس سے گزارنا شروع کر دیا. میرے لیے سب کچھ بدل گیا. اللہ تعالیٰ واقعی میرے لیے ہر چیز کو بدلنے کا ذریعہ بن گئے. اللہ تعالیٰ میرے لیے واقعی خالق, مالک, مدبر, رزاق, المخصی اور الحافظ بن گئے ہیں. اب میں کائنات سے اندھوں کی طرح نہیں گزرتی, وہاں اب ہر جگہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نظر آتی ہیں. میں کلام اللہ کو اب ہر حرف پر 10 نیکی کے لیے نہیں پڑھتی, اب اس کو میں اللہ تعالیٰ سے باتوں کے طور پر پڑھتی ہوں. اس میں مجھے اب اللہ تعالیٰ کا پیار بھی نظر آتا ہے اور ناراضگی بھی. ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ دل بدل رہا ہے. ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں 47 ایئرز پہلے نہیں, بلکہ ایک سال پہلے 2020 کے دورے قرآن میں دوبارہ پیدا ہوئی ہوں. تو یہ تھی ایک ٹیسٹیمونی, یہ تھی ایک گواہی, اور اس کو جتنا مرضی عام کر دیں, آپ اس کو अपने हर प्यारे और अपने हर उससे जिसके लिए दिल में तड़प और मोहब्बत है उसके लिए इस चीज़ को रखिएगा कि अगर अभी भी इरादा नहीं है, अभी भी संजीदगी से नहीं सोचा, तो अभी भी वक्त है। हम पहला पारा कल शुरू करेंगे। आज वेलकम रमदान है। इस 24 घंटे में आप इस मैसेज को जितना भी आम कर दें, और हो सकता है कितने लोगों की जान बच जाए, तो बात यही है। अल्लाह की किताब, अल्लाह का कुरान दिलों पे फुहार बन के पड़ता है, लेकिन ये अलग बात है कि हम उसको महसूस कर नहीं पाते। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला की इस किताब के साथ अपने ताल्लुक़ को ज़िंदा करते जाते हैं, आपको ऐसे लगता है आपको एक नया जन्म है, एक नई ज़िंदगी है। हमारा ईमान है कि ज़िंदगियाँ बस दो ही हैं, एक इधर की और एक आखरत की। वो पहली ज़िंदगी, मुर्दगी वाली ज़िंदगी, जिसमें लोग हमें ज़िंदा समझते थे, लेकिन हम उस तरह के ज़िंदा नहीं थे जैसा कि ज़िंदगी का एक हक था। तो आइए पूरे शऊर, पूरी मोहब्बत के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बि श्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर व तमिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदु मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक ताला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदु मजीद। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज उसने हमें मौका दिया और हम रमज़ान 2021 का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ बैठे। किसी भी मनपसंद मेहमान के आने की जितनी खुशी किसी को हो सकती है, उतनी ही खुशी इस वक्त हम अपने दिलों में इस रमज़ान की महसूस कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट का इंतज़ार होता है अपने प्यारे के आने का, दिल की यही कैफियत है। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं? किसी को खौफ तो नहीं आ रहा, कोई घबरा तो नहीं रहा, कोई परेशान तो नहीं हो रहा कि हाय रमज़ान क्या होगा, कैसे होगा? याद रखिए कि रमज़ान के बारे में सोचकर आपको अपने दिल में जो महसूस होता है, ये आपकी ईमानी हालत की चुगली होती है। कैसे? अगर रमज़ान का तसव्वुर करते ही दिल में खुशी का एहसास है और बेचैनी है, तो इंशाल्लाह ईमान की आला हालत की दलील है, क्योंकि मोमिन ही है जो रमज़ान को खुशी से वेलकम करता है। और अगर ये घबराहट है क्या होगा, इतने लंबे रोज़े, कोई कहेगा इतने गर्म रोज़े, कोई कहेगा इतनी मुश्किल, इतनी चीज़ें, तो फिर दुआ की ज़रूरत है, घबराना उसमें भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि रमज़ान और गैर रमज़ान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप भी ऐसा ही कहने और सोचने वालों में हैं, तो इस्लाह की ज़रूरत है, क्योंकि एक ईमान वाले के रमज़ान और गैर रमज़ान में ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता, 19-20 का फ़र्क होता है। 19-20 के फ़र्क को वो वक्त के तब्दील करने से जानता है। मसलन पहले नाश्ता 7-8 बजे करता था, तो अब फजर से पहले कर लेता है। डिनर का टाइम थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, दैट्स इट। कुछ शरई पाबंदियाँ जो लग गईं उसके ऊपर अपने आप को जमा के रखता है। अदरवाइज़ मोमिन का रमज़ान और गैर रमज़ान बिल्कुल एक जैसा होता है। ना उधर झूठ बोलता है, ना इधर झूठ बोलता है, ना उधर गीबत करता है, ना उधर गीबत करता है। अपने वक्त का इस्तेमाल उसकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी होती है। तो हम सब इस वक्त अपने दिलों की कैफियत को जान लें कि मुझे इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है। हकीकत यह है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, और जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की मोहलत दी और वो उससे फ़ायदा उठाकर अपने आप को अल्लाह के करीब ले आया, उसने गोया के जीने का मकसद पा लिया, और उसने उस ज़िंदगी को पा लिया जो वो मकसद देकर आपको मुझे हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा गुमान अपने बारे में और अपने साथियों के बारे में भी यही है कि हम सब रमज़ान का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। किसी भी काम को तैयारी के साथ करना या बग़ैर तैयारी के करना, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ये चंद दिन जो अभी तक रमज़ान के आने में हैं, हम इसमें इंशाअल्लाह ताला आज से ही अपने आप को रमज़ान मोड में समझेंगे और हम कैसे इससे फ़ायदा उठाएं। कुछ चीज़ें जो मेरे और आपके रिमाइंडर्स हैं, सिर्फ याद रखिए कि हम में से कोई रिवॉर्ड नहीं है। अगर कोई है तो मैं बड़ी खुश हूँ, यानी जिसने पिछले रमज़ान के बाद कलमा पढ़ा और आज इस सोच के साथ रमज़ान में दाखिल होने के लिए बैठा है या बैठी हैं कि मैं तैयारी करूं, भला रमज़ान होता क्या और इसको कैसे गुजारते हैं। अदरवाइज़ हम सब तो बिल्कुल शुरू से ही करते रहे रमज़ान की तैयारियां और रमज़ान को लेते रहे, और किसी काम का पहली दफ़ा करना या उसका होना आपके मेरे लिए उससे मुख्तलिफ होता है जो हम बार बार करते हैं। तो हमारे इस साल के वेलकम रमज़ान का टॉपिक क्या है? जाहिद फी रमज़ान, या फिर आप कह लीजिए जाहिद फिल रमज़ान। रमज़ान में खूब मेहनत कीजिए, यानी हम मेहनत करने की आदत डालने के लिए यहाँ बैठे हैं। और हमारे इस साल का जो टॉपिक है वो है अनवाउल कुलूब फिल कुरआनिल करीम ऐन कल्बुक, दिलों की हालतें या दिलों की किस्में कुरान पाक की रोशनी में तुम्हारा दिल किधर है। इन चीज़ों को सामने रखें तो इस साल हमने दिल पे काम करना है। अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि तुम इस महीने को अपने लिए तकवा का महीना बनाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे तुमसे पहलों पे किए थे। मकसद क्या है? कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हें अल्लाह ताला का एहसास और हो। तो लिहाजा तकवा के लिए इंसान को अपने आप को मांझना पड़ता है। आप तसव्वुर में लाइए एक ऐसा बर्तन जो कसरत इस्तेमाल की वजह से, नंबर एक, नंबर दो केयरलेसनेस की वजह से, और नंबर तीन उसको किसी ऐसी चीज़ से टच कर दिया आपने कि जिसने उसकी शक्ल बदल दी। कोई भी मुमकिना सूरत जो आपके जहन और दिल दिमाग में आती है किसी बर्तन की गंदगी के जहन में ले आए, वो आपकी कढ़ाई हो सकती है जिसमें आप सारा साल फ्राई करते हैं और 2 3 4 दिन, क्या 1 हफ्ता गुजर गया उसको साफ़ नहीं किया और पूरा ऑयल से भरा हुआ उसका पैंदा है बाहर है। इस तरह आपका प्रेशर कुकर, किसी को भी जहन में लाइए। अब वो कुकर आपके सामने है जिसमें बहुत कुछ रखा हुआ है, आप उसको साफ़ करने लगे। इस वक्त आपके मेरे दिल की कैफियत क्या है कि मैंने अपने दिल के इस बर्तन को साफ करना है, और मेरा गोल क्या है? जाहिद हत्ता तखरुजा मिन रमदानी बगैरिल कल्बिल लजी दखल तबिही। इतनी मेहनत करनी है कि मैं जब रमज़ान से गुजर जाऊं तो मेरा दिल बदल चुका हो। तब्दीली दिल का सफ़र है ये। आप कह सकते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, इसी तरह बाज़ दफ़ा इंजाइना का पेन है, कभी कुछ और तरीके से दिल के वॉल्स खोले जाते हैं। कोई भी चीज़ जो आपने जहन में रखी हो अपने लिए उसको ले आइए कि कभी भी किसी को कोई दिल की तकलीफ़ हुई और वो डॉक्टर के पास गया और किस तरीके से फिर उसको लेकर चला गया। ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए हमारा इस साल का रमदान दिल की बातें हैं, मैं और मेरा दिल। और इसके लिए आज से नियत क्या है? जाहिद। और कुरान क्या कहता है? कि जो मेहनत करता है, जो कोशिश करेगा, वो अपने ही लिए करेगा। अल्लाह सुबहाना ताला के इस कलाम को अगर आप पढ़ जाएं और समझ जाएं और आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, तो मुझे तो जो लव सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसके ऊपर गौर व फिक्र करूं तो घंटों उन आयतों को देखने को दिल करता है, वो आयात है जिसको जोहद से ताबीर कर सकते हैं। जीम हा दाल, जोहद, मुजतहिद, जिद्दोजोहद, और इसी तरह से जिहाद और इसी तरह से मुजाहिदा, ये सारे लफ्ज़ मेहनत को साबित करते हैं। इस्लाम ने आपको मुझे जो काम दिए हैं ना, उसके अंदर दो तरह की जिम्मेदारियां हैं, एक इनफिरादी और एक इज्तमाई। इनफिरादी चीज़ें वो हैं जिसको आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के नाम पे करते हैं, जिसका आगाज़ दिल से ही होता है। जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा अल्लाह ने दिल की सूरत में रखा और उसको रिमोट कंट्रोल बना दिया हमारे सारे जिस्म का, या फिर आप कह लीजिए कि उसको आका बना दिया पूरे जिस्म के अज़ा का। जो दिल कहेगा जिस्म वही करेगा। जब दिल आपसे कहता है अच्छे काम करो तो आप अच्छे काम करती हैं, आपका दिल कहता है गलत काम करो तो आप गलत करते हैं। लिखिए ज़रा चंद बातें। आपका मेरा रिमोट कंट्रोल दिल है। अगर आपने चैनल चेंज करना हो तो क्या करते हैं? यानी रिमोट पे जो एक बटन है उसको दबा देते हैं और फिर चैनल बदल जाता है। आज तक की अपनी कल्बी कैफियत को जहन में लाइए। क्या आप अपने आप से खुश हैं? खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं खुद से खुश हूँ? मुझे जैसा होना चाहिए क्या मैं वाकई वैसी हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी के अंदर जो अल्लाह ताला की नेमतें और उसके इनामात हैं उसका हक जितना अदा करना चाहिए था मैं करती हूँ? मुहासबा खुद से खुद कीजिए। मेरा ख्याल है मेरे समेत आप में से कोई भी 100% सेटिस्फाइड नहीं है अपने आप से। ऐसे ही है, इसका अर्थ है कि देर इज सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। तो इस रमज़ान का कोड वर्ड बना लीजिए जाहिद, मेहनत, और खूब मेहनत। और अगर कुरान पाक खोल लूँ, और मैंने खोला हुआ है, तो कुरान पाक में 41 टाइम ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ फॉर्म्स में। टोटल आयात जिसमें ये लफ्ज़ है वो 36 हैं, 36। और आप कुरान की इस तरतीब पे हैरान हो जाएंगे, बिलीव मी, जिसको आप कह सकते हैं कि ये डिवाइन वर्ड्स हैं। इसको कुरान के अजायब भी कहते हैं। और वो क्या कि पहली आयत क्या है, सूरत बकरा की आयत नंबर 218। सिर्फ नंबर लिखिए और मेरी बात को सुनिए। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाही औलाइका यरजून रहमतल्लाही वल्लाहु गफूरुर रहीम। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और जिहाद किया, जिसको आप जिहाद भी और जिद्दोजहद भी कर सकते हैं आज के दौर के लिए, अल्लाह के रास्ते में, यही हैं वो लोग जो उम्मीदवार हैं अल्लाह की रहमत के, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। ये आयत क्या बताती है कि अल्लाह सुबहान ताला ने जिस चीज़ पर जन्नत का वादा किया है वो ईमान के बाद हिजरत, और हिजरत के साथ ही साथ वो जिद्दोजहद है। हम अल्लाह ताला की जन्नत के उम्मीदवार तो होते हैं, लेकिन हम बीच के मरहले भूल जाते हैं, इल्ला माशा अल्लाह। ऐसी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि जिसको हम अपनी ज़िंदगी में अगर जगह दें तो हमें हकीकत में वहाँ जाकर वो अफसोस नहीं होगा जो हमें शायद कभी हो। हदीस में आता है कि जन्नतियों को जन्नत में जाकर सिर्फ उन लम्हात पे अफसोस होगा जो अल्लाह की याद और उसके जिक्र के बगैर गुजर गए। तो क्या मैं और आप ये चाहेंगे? कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम वहाँ जाएं और हमें अफसोस हो। तो पहली बात नोट कीजिए, अभी जिंदा हैं, अल्लाह सुबहाना ताला ने मौका दिया हुआ है आपको मुझे इस बात का कि हम अभी मेहनत कर सकते हैं। देखिए ईमान तो है, ज़रा सा ईमान को भी परखिए। हर साल रमज़ान से पहले जो लेक्चर्स होते हैं मैं उसमें इसकी ज़रूर बात करती हूँ और आज भी करूँगी, क्योंकि गलत अकीदे के साथ सही इबादत भी कबूल नहीं होती। ये ऐसे ही है कि निकाह ना हो तो बच्चा चाहे फितरत के वही तरीके पे पैदा किया जाए लेकिन वो नाजायज़ हो जाता है। सबको पता है जो बात मैंने कही। इसी तरह से अकीदा अल्लाह और बंदे के बीच का ताल्लुक है। अगर मैंने अपने मालिक का हक नहीं पहचाना तो फिर मैं उसकी इबादत करूं या कुछ करूं, ये ऐसे ही है कि कोई शख्स निकाह के बोल बोले बगैर किसी भी औरत को बीवी समझकर उसकी जिम्मेदारियां निभाने लगे। इसको क्या कहते हैं ये सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप अल्लाह सुबहाना ताला के साथ अपना ताल्लुक दुरुस्त करना चाहते हैं तो आपको एक गोल बनाना है, और वो क्या है, या रब्बी। अपने आप को एक सीढ़ी पे खड़ा महसूस करिए, एक लैडर है, आप जमीन पे हैं, आपका रब आसमान पे है। अंतफिस समावाती, ए अल्लाह तो आसमानों पे है। मुसलमानों का ये मुत्तफिका अकीदा है कि अल्लाह ताला आसमान पे है अपने वजूद के एतबार से। हाँ, अपनी समात, अपनी बसारत और अपने इल्म के नाते से वो हर बंदे के दिल के अंदर की हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से जानता है। तो आपका मेरा सबसे पहला मुजाहिदा होगा क़ुर्ब इल्लाह का, मैंने रब को पाना है। आप इस इमेज पे गौर कीजिए, यहाँ सीढ़ियाँ हैं, आप ताल्लुक बिल्लाह की किस सीढ़ी पे खड़ी हैं, ये आपका अपना काम है, इस पे मुजाहिदा करना है। क्योंकि जब तक अल्लाह के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं होगा, बंदों के हक कैसे पूरे करेंगे आप? नामुमकिन है ये बात, इम्पॉसिबल है ये बात। अब आप देखिए कि एक इमेज में एक शख्स मिडल में है, जमीन से ऊपर मिडल में है, और अभी जितने मरहले तय किए हैं उससे ऊपर भी कुछ दर्जे मौजूद हैं। ये है जाहदू फी सबीलिल्लाह। और इसी को आप हैरान होंगे, दूसरा मुकाम लिखिए, सूरत आले इमरान की आयत नंबर 142। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान किया है कि तुम जन्नत में जाओगे, दाखिल हो जाओगे, या दाखिले की बातें हैं, यानी डोर पे खड़े रहोगे? और लिखिए बहुत सारे लोग बड़ा अरसा जन्नत के दरवाजे पे खड़े रहेंगे, कुछ को तो आराफ पे खड़ा कर दिया जाएगा, कुछ उसके भी आगे ले जाकर। दरवाजे खुलने में वक्त लगेगा क्योंकि जन्नत की चाबी नमाज है। तो ईमान तो था लेकिन चाबी कोई नहीं थी, थी भी तो दंदाने कोई नहीं थे। और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को चाबी कह लीजिए तो कलमा तो पढ़ते थे लेकिन दंदे घसे हुए थे, कहीं शर्क था कहीं कुछ था। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, हम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने ये गुमान किया है, यानी सोचिए। अब ये आयत अगर तफसीर में मैंने करानी होती तो इसमें मानी का एक समंदर मुझे दिख रहा है, लेकिन सिर्फ शऊर दिलाने के लिए अपने और आपको कि जन्नत सिर्फ खुश फहमियों से नहीं मिलती, जन्नत सस्ता सौदा नहीं है। तुमने किसी आम रिजॉर्ट में दाखिल होने से सोचा है जन्नत को, तुम्हारे लिए जन्नत व्हाइट हाउस से भी छोटी है। कोई आप में से मेरे में से व्हाइट हाउस में खुद जा सकता है? एफल टावर का नीचे से एंट्री का डोर वो बंद कर दें तो आप और मैं जबरदस्ती जा सकते हैं? तो लिखिए फिर अगली बात, हम जबरदस्ती करके जन्नत में नहीं जा सकते, ये रब का घर है। वल्लाहु यदु इला दारुस्सलाम, पढ़ते हैं आप पढ़ेंगे ये सारी आयतें जो बोल रही है ना, ये दौरे कुरान में आपने सुननी है, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, ना इसको लिखने की कोशिश करें। इस वक्त अपने दिल पर लीजिए कि मैं आप जन्नत में जाना चाहते हैं, तभी तो बैठे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जन्नत की तलब है। आज तो ये भी खत्म हो गई, गैरों की तो बात ना करूं, अपने ही मुसलमानों में से आवाजें उठने लगी, ये क्या जन्नत जन्नत की रट लगाई हुई है, उधार की बातें करते हो, हम तो नकद को मानते हैं। और बाबर बैश कोश के जहां दोबारा नीस्त, उन्होंने तो किसी और रंग में कहा होगा लेकिन लोगों ने सोचा कि मौज करो, जियो, ऐश करो। अल्लाह ताला फरमाते वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, और अभी तक तो अल्लाह ने जाना ही नहीं है तुम में से उन लोगों को, जाहदू मिनकुम, जिन्होंने मुजाहिदा किया तुम में से, मेहनत की। जोहद का लफ्ज़ जीम हा दाल से होता है, बस जिद्दोजहद को ले लें, मेहनत करनी पड़ेगी। व यालमस्साबरीन, और वो सब्र करने वालों को भी जानता है। और ये जितनी आयतें मैं आपको लिखा रही हूँ ना, ये तरतीब के एतबार से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो कि हमने मेहनत किस रुख पे करनी है और कैसे करनी है। जन्नत में दाखिले की उम्मीद है, मेहनत करते रहिए। हिदायत सीढ़ी की तरह होती है, जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी मामले को अपनी निगाहों में रखते हैं ना, तो आपको इस चीज़ का खूब अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि उसमें हमेशा गुंजाइश होती है, सारी ज़िंदगी हिदायत का सफ़र चलता ही जाएगा। आपको हर मौके पे ऐसे महसूस होगा कि अभी मुझे और भी चाहिए हिदायत, तभी तो बैठे हैं। पिछले बस 10-12 साल से दौरे कुरान सुन रहे थे, अब ना भी सुने तो क्या ज़रूरत है? नहीं, जैसे मुस्तकिल खाने की ज़रूरत होती है ना, वी नीड फूड। कोई कहते पहले भी तो रोटी खाई थी ना, पहले भी भिंडियाँ खाई थी ना, पहले भी तो चावल खाए थे, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट एनर्जी। तो यहाँ इस सवाल का जवाब भी आपको गैर महसूस तरीके से मिल गया कि जब सब कुछ तो पता है कुरान में क्या होता है तो क्यों सुने, बेहतर नहीं कि सादा ही पढ़ लें? दौरे कुरान में जो 2 घंटे से ऊपर कुछ टाइम पे मैंने एक पारा सुनना है तो मुझे तर्जमा आता है, पता भी चल गया है, तो स्वाब तो कोई नहीं होना, तर्जमे का क्या होता है, अरबी पढ़ लें। देखिए ये है वो सोच जो आज हम उम्मत मुस्लिमा को अपने इर्द गिर्द दिखती है, तो उसका जवाब ये है कि खाना भी तो फिर खाते हैं। तो हम कुरान का एक बार फिर तर्जमा क्यों पूरा सुनेंगे, इस सोच के साथ सुनेंगे क्योंकि हम अपने आप को इस चीज़ के साथ लगाना चाहते हैं कि हम मुस्तकिल सरगर्म रहें। खाते हैं तो आंख खुलती है ना, बोला जाता है, चला जाता है, तो फिर दूसरी बात जो इसमें आपको मुझे इस आयत से समझ आ गई, मुस्तकिल सफ़र। आप अपने आप को हिदायत के जिस मरहले पे देखते हैं, डोंट वरी। इवन आप नीचे खड़ी हैं अभी, स्लीवलेस है आपकी, फिर क्या हुआ? क्यूलॉट्स पहनती हैं तो क्या हुआ? दुपट्टे का तो तसव्वुर नहीं, फिर क्या हुआ? डोंट वरी, ये आपके लिए है। दौरे कुरान हर उस बंदे के लिए है कि जिसकी ज़िंदगी में चारों तरफ अंधेरे हैं और उसको पता ही नहीं है कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। दौरे कुरान कोई स्कॉलरली स्टाइल नहीं होता, कोई ग्रामर नहीं होती, कोई तजवीद नहीं होती, कोई असाइनमेंट्स, और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ये तो दिलों के जायज़े लेने का सफ़र है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को लेते देते रहेंगे आपको महसूस होगा। चलिए अब एक सवाल लिखिए अपने आप से कि क्या मैं अगर इस सफ़र पे चल पड़ी तो फिर बस मैं जन्नत में चली जाऊंगी, और अगर मैं ना निकलूं इसको सुनने के लिए। और अब इस वक्त हालात के मुताबिक आप खुद सोचिए, यानी आप में से कुछ लोग ऑनलाइन से सुन रहे हैं, माशाल्लाह अक्सरियत ऑनलाइन से ही सुन रही है, सभी को पता है। और हालात के मुताबिक जब जगहों पे लॉकडाउन ख़त्म होता जाएगा तो जगहें खुल जाएंगी। आज हम आज के रूल के मुताबिक 3 या 4 लोग ही हैं इस जगह पे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस पे भी बहुत खुश हैं। बाहर हमारे साथ चाहे हज़ारों लोग मौजूद हैं, लेकिन सवाल लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं अपने आप को मज़ीद फोकस करने के लिए क्या करूं? तो उसका जवाब लिखिए, जितना गुड़ उतना मीठा। घर से शुरू करती हूँ, आप लोग इस वक्त अपने घरों से सुन रहे हैं। नंबर एक, अपने लिए गोल बनाइएगा कि लाइव सुनना है। लाइव का ऑपोजिट क्या होता है आपको पता ही है, डेड। जब एक उस्ताद बात करता है, कहीं भी आप इस असूल को आजमा के देख लीजिएगा, और शागिर्द उसके साथ बैठे होते, चाहे वो एक दूसरे को ना भी देखें, लेकिन एक एनर्जी मिलती है, वेव्स निकलती हैं। क्योंकि इस वक्त अगर मुझे किसी ज़रूरत के लिए उठना भी है तो मैं नहीं उठूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे सुन रहे हैं। एक सेकेंड आवाज़ बंद हुई तो आप सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन बिलफर्ज, अगर मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रही होती, आप मेरे सामने इस वक्त ना बैठे होते अपनी अपनी जगहों पर, तो मैं जस्ट पॉज दबाती और जाती, वो दो चार काम करके आ जाती। मैं बैठी और मेरे पास कोई आ ही जाता, कोई मेहमान आता, तो क्या मैं रिकॉर्डिंग के दौरान उठ सकती थी? ना, उठ जाती। लेकिन अब मैं उठ सकती हूँ? कभी भी नहीं उठूंगी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है। ये फर्क होता है। अपने लिए गोल बनाइए, मैंने अपने वर्क को खुद मेंटेन करना है, अपने वर्क और स्केड्यूल के हिसाब से, और दुनिया का हर मामला पॉसिबल है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने हर बीमारी की दवा बनाई है, इसी तरह आज कहते हैं कि हर मसले का हल मौजूद है। वेयर देयर इज एनी प्रॉब्लम, देयर विल बी एनी सोल्यूशन। आज तक कोई ताला ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। मेंटेन कीजिए, ये आपको करना होगा। इट्स योर राइट। खिलाइए, पिलाइए, घर साफ कीजिए, शौहर की हर ख्वाहिश पूरी कीजिए जो अल्लाह ने हदूद में रखी हैं, बच्चों को देखिए, घर के बुजुर्गों को देखिए, आप अपने फैमिली के दूसरे परेशान हाल लोगों की मदद कीजिए, बट इन सब के साथ साथ आउट ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटों में से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपके अपने हैं। ये हमारा हक है, इसके बगैर बात नहीं बनती। जैसे आप 7 घंटे सोते हैं, 6 सोएं, 7 घंटे सोएं, सोते हैं ना, ये आपका राइट है। दिन में सारे दिन के वॉशरूम जाने को, यूज़ करने को देख लीजिए तो आधा घंटा, कोई नहीं रोकता। आप जॉब पे तो आपको टॉयलेट में जाने से कोई नहीं रोकता, आई एम श्योर। तो इसी तरह से जैसे हम जिस्मानी खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना, इसी तरह से हमें एनर्जी मिलती है इस चीज़ से कि हम बेहतरीन तरीके से अपने लिए स्पिरिचुअल फूड का इहतमाम करें। तो ये आपका स्पिरिचुअल फूड का टाइम है। अक्सर जगहों पे तो ज़ाहिर है रोज़े ही की कैफियत होगी, क्योंकि जो मेरे गुमान में सबसे ज़्यादा पीछे जो साथी हमारे साथ सुनेंगे टाइम, वो USA और कनाडा का है, और वो भी एग्जैक्टली वो वक्त है जब वो सहरी खा रहे होंगे या खा चुके होंगे। और उधर से आगे आते जाइए तो यूरोप में ओस्लो से मैं इस वक्त आप लोगों से बात कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह स्कूल को क़यामत तक आबाद रखे। हमारे स्कूल में से इस वक्त ये ट्रांसमिशन जा रही है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफा है जो अल्लाह ने हमें दिया, और अल्लाह इसको क़यामत तक आबाद रखे। यहाँ 11:30 का टाइम है जब मैंने शुरू किया, इससे आधा घंटा पहले जो है वो हमारे जो सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनको जूम में जगह दी जाती है, क्योंकि पूरा साल कुरान से जुड़े रहते हैं तो उनका हक है, तो वो उसमें कुछ शेयरिंग्स और कुछ पिछली रिवीजन और कुछ दुआएं करते हैं। और यूट्यूब, फेसबुक और डिफरेंट जो भी चैनल्स हैं उस पर हम 11:30 पे ब्रॉडकास्ट लेते हैं। इस वक्त को आप अपना वक्त बनाइए। अब इन दो टाइमों के बाद आप सब अपना सोच लें, UK में तो इससे 1 घंटा पीछे, और फिर आखिर में जो टाइम हमें पाकिस्तान और इंडिया के टाइम के बाद मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया का होगा, मलेशिया के जो लोग हैं माशाल्लाह, इंडोनेशिया, दुनिया में जहाँ भी कोई है, इस टाइम को मैनेज कीजिए। हर साल जो दौरे कुरान का टाइम चूज़ किया जाता है उसमें ये रखा जाता है जहन में कि किसी टाइम जोन में कोई ऐसी एबनॉर्मल कैफियत ना हो कि वो बेचारे महरूम रहे। तो लाइव सुनिए, फोकस के साथ सुनिए। इस वक्त भी हमारे पास जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस है, मैं यही सोचती हूँ, आपको म्यूट कर दिया गया, आपकी वीडियोस बंद हैं, आप खुद भी म्यूट कीजिए खुद को, और बाहर की सारी चीज़ों को म्यूट करने के साथ अंदर के स्विच भी बंद कीजिए जो सोचों और जहनों में आते हैं। कोई फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं है इस वक्त मुझे, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई मैंने प्लान नहीं करना, मुझे इस वक्त कोई ऐसी विंडो अपने लैपटॉप की, अपने फ़ोन की नहीं खोलनी कि जो मैं इससे बात खोल सकती हूँ। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट का फ़र्क समझना क्या होगा, और याद रखिए कि इधर हमने कोई छोटी सी खयानत की सोच ही भटक जाएगी, मैं एक कॉल सुन लूँ, मैं एक मैसेज कर लूँ, खयानत है ये। अगला 10 मिनट की टॉक आप सुननी छोड़ देंगे अगर आपने सिर्फ एक सेकंड का कोई मैसेज देख लिया, माइंड हाथ से निकल जाता है। ड्राइवर की एक छोटी सी गलती सारों को मौत के घाट उतार सकती है। फिर उसके बाद अगली चीज़ इसमें यह है कि जब आप लाइव सुनते हैं, कोशिश कीजिए कि आप अपने घर वालों को अपना मुआविन बनाएं। खाना साथ खाएं तो अच्छा लगता है कि अकेले अकेले खाएं तो अच्छा लगता है? साथ खाएं तो अच्छा लगता है। हम कितना सब्र भी कर लेते हैं लेकिन अकेले नहीं खाते। मियाँ साहब खाते नहीं बेगम के बगैर, और बेगम के गले से भी नहीं उतरता। यही हाल माँ बच्चों में भी और हर रिश्ते में ना। तो घर में जितने लोग हैं उनके साथ आज ही से ये बात कीजिए और ये फैमिली टाइम बनाइए। वो चाहे अपना कुछ काम करते रहें, पास बैठे रहें, लेकिन बोले नहीं। ये आपका और आपके घर वालों का फूड लेने का वक्त है, स्पिरिचुअल फूड। खाना खाते हुए बोलें तो खाने में उछू लग जाता है गले में। कोशिश कीजिए घर वालों को साथ सुनाएं। बच्चों का शोर है तो बच्चों को समझाइए। देखिए साहबियात कहती हैं कि हम अपने बच्चों को मस्जिद में लेके जाते थे और रोज़े से हम होते थे, बच्चों के भी रोज़े रखाते थे, और जब वो हमसे खाना मांगते थे तो हम उनको खेलने के लिए गुड़िया देते थे। तीन तीन चार चार साल के बच्चों को माएँ इस तरह लेके जाती थी, आपने मैंने एक नस्ल तैयार करनी है। इट्स नॉट जस्ट फॉर नॉलेज, इट्स फॉर इंस्पिरेशन, इट्स जस्ट नॉट अ दौरे कुरान, इट्स अ मिशन। सोई हुई उम्मत को जगाना है, दिलों को बदलना है, क्योंकि या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। आज हमें आपको अपने दिलों को जिंदा करना है, तो इसके लिए फोकस्ड होकर बैठना है, जो बात हो गई। और साथ ही इसी वक्त में सुनने की बात क्यों कर रही हूँ, इसकी मिसाल आपको प्लाव से देती हूँ। सभी को अच्छा लगता है ना वो प्लाव जो दम खुलते ही, और बच्चे पहले से चमचियां जा रहे, मामा कब आएगा कब आएगा। टेबल पे आपने सैलड रायता बर्तन रखे हुए हैं और आप कहते हैं बस 2 मिनट है दम में, और वो भी फेरे लगा रहे होते हैं किचन के कब पकेगा। और फिर जब वो ढक्कन खुलता है और आप डिश में डालकर लाती हैं और वो लुकमा अंदर जाता है, आप देखिए कि उस पुलाव में, और उसी पुलाव को 2 घंटे बाद ही माइक्रोवेव में फिर वो भी जुल्म या गर्म करके खाने में कोई फर्क होता? जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो मेरी नज़र में लाइव क्लास को अपने वक्त पे सुनना, और एज इट इज सेम क्लास जो आजकल रिकॉर्ड भी हो जाती है साथ ही, बाद में सुनने में ये फर्क होता है। और जब आप साथ मेरे इस वक्त सुनेंगे ना, तो ये 2 आवर प्लस कुछ ऊपर का टाइम आपको चुटकियों में गुजरता दिखेगा। ये एक तासीर होती है लाइव क्लास की, ये एक तासीर होती है कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। रिकॉर्डिंग के साथ जब आप सुनेंगे तो आपको बोझल लगेगा, मैं आपको अभी से बता रही हूँ। फिर आप आगे पीछे करेंगे, जुल्म करेंगे। पहली बात तो ये हो गई कि आप साथ सुनेंगे, और दूसरी बात यह कि अगर आप बाद में भी सुनते हैं, हो सकती है किसी की जेन्युइन रीज़न, मैं मानती हूँ, ठीक है, कोई गुस्सा ना करे, कोई नाराज़ ना हो, आपको जैसे लगे ठीक कर लीजिए, लेकिन फिर उसमें अपने आप से एक वादा कीजिए कि जैसे उस्ताद के साथ लाइव बैठकर सुनते हैं, जैसे इस वक्त भी हम यहाँ तीन चार लोग बैठे हुए हैं, जो इसी तरह से बाद में फिर रिकॉर्डिंग को भी आपने ऐसे ही सुनना है। वादा कीजिए कि मैंने आगे पीछे नहीं करना। मेरे नोट्स मिस हुए हो गए, मुझे अब कोई आप में से कह रहे कि आप जरा आहिस्ता बोलें, आप भी नहीं कहेंगे, मैं भी नहीं रुकूंगी, जो मिल गया सो मिल गया, बाद में ले लेंगे। आगे पीछे नहीं करेंगे, उसको कट एंड पेस्ट नहीं करेंगे, बीच में बातें नहीं करेंगे, बीच में से फोन नहीं सुनेंगे। आप वो वक्त फिर अगर आपको सूट करेगा जिसको आप चूज करेंगे, और कुछ जगह मजबूरियों में होगा, कहीं क्लास में सुनेंगे, हमारे अपने कुछ सेशंस ऐसे हैं कि जहां वो अगले दिन मिलके सुनेंगे, तो फिर ऐसे ही सुने जैसे इस वक्त सुन रहे हैं, और फिर आपको वाकई भी ये फीलिंग आएगी भी लाइव की। और उसके बाद अगली चीज जो बहुत ही खूबसूरत है, और दुआ करते हैं अल्लाह पूरी उम्मत से, पूरी इंसानियत से इस बीमारी को ख़त्म कर दे, ना ये बल्कि इससे दूसरी बीमारियां भी अल्लाह अपनी रहमत से पूरी ख़त्म कर दे। जो बीमार हैं उनको सेहत दे दे, जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा, जिनकी मौत के लिए ये बहाना बना उन सब को इससे उनके साथ वालों को इबरत लेने वाला बना। मिलकर अपने लिए दुआ कर लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिन मब्तिलाकी बिही वफद्दलनी अला कसीरे मिम्मन खलक़त तफ़दीला। ये आप अपने लिए भी लिखिए, किसी मुसीबत ज़दा को किसी मुसीबत में मुब्तला देख कर अगर ये दुआ मांग ली जाए तो अल्लाह ताला की रहमत से आपको वो तकलीफ़ नहीं होती। तो मैंने अभी किस सोच से मांगी, वो जिनको ये खुद हुआ और वो फौत हो गए, जिनकी बहनों को हुआ, जिनके शौहरों को, यानी रिश्तेदारानों को भी ना हो, यानी आप इस दुआ में अपने फैमिली के लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मेरे भाइयों को ना ये बीमारी हो, मेरी बहनों को ना हो, मेरे बच्चों को ना हो। दूसरे के बच्चे का सोच के आप ये दुआ कर लें, और फूफियाँ खाला मामू सबका सोच कर ये दुआ कर लीजिए। और जब ये खुल जाए, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन ऑलवेज होपफुल होता है। एक सवाल लिखिए कि जब घर बैठे जो मिलता है तो फिर आके क्यों सुने, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका जवाब अब इसी रूट की अगली आयत पे लीजिए, 95 सूरत निसा। ला यस्तविल कायदून मिनल मोमिनीन, बराबर नहीं है बैठ रहने वाले मोमिनों में से, गैर उलिद दरर, बिला वजह, किसी जरर के बगैर घर बैठने वाले एक लोग, उसके बरक्स वल मुजाहिदू नफी सबीलिल्लाही बी अमवालिहिम व अनफुसिहिम, यानी वो लोग जो छोटी छोटी बातों को उजर बनाकर, वजूहात बनाकर नेकी के कामों से पीछे हो जाते हैं, वो और जिद्दोजहद करने वाले अल्लाह के रस्तों में अपनी जान और अपने माल से जो करते हैं उनके बराबर नहीं हो सकते। किसका दर्जा ज्यादा है? फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजा। अल्लाह ने फजीलत दी, बुजुर्गी दी जिद्दोजहद करने वालों को, मुजाहिदे करने वाले, जिहाद करने वाले अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ, उन पर जो बैठ रहे एक दर्जे के एतबार से, यानी जितना गुड़ उतना मीठा। आने में पेट्रोल लगता है, माल लगता है, जान लगती है, चलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो ये जो पसीना बहता है, वक्त लगता है, आपका एक्स्ट्रा टाइम आने और जाने का इंक्लूड होगा, आपके दर्जे उससे बेहतर हो जाएंगे जो कि आपके घर बैठकर करने के थे। हाँ, कुल्लम वाद अल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह मायूस उनको भी नहीं करता जो मजबूरियों में किसी वजह से स्टक होकर फिर अपनी ही जगहों पे रहते हैं। अल्लाह कहते हैं वादे सबसे अल्लाह के अच्छे हैं। वफद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अजीमा। लिखिए सूरह निसा 95। इस लिहाज से यूनिक आयत है कि 3 दफ़ा यहाँ जोहद का जिक्र है। ऐसे लगता है तसल्ली ही नहीं हो रही कि अल्लाह ने फजीलत दी है उन लोगों को जो जिद्दोजहद करते हैं, उन लोगों पर जो बैठ रहते हैं अजर अजीम की। तो क्या पता चला कि हमने अपनी इस्तेतात के मुताबिक जिद्दोजहद करनी है। खुद देखिए, अल्लाह ने अक्ल दी है, अल्लाह ने समझ दी है बंदे को क्या चाहिए कैसे चाहिए। तो अगली बात क्या है कि आपने अपनी हस्बे तौफीक मेहनत करनी है। फी रमदाना जाहिद नफ्सक कद्र इस्ततौतिक। अपनी इस्तेतात यानी अपने स्टेमिने, अपने हालात के मुताबिक कोशिश कीजिए। वक्सिल कल्बक कबला जसदिक। अपने दिल को धोना है अपने जिस्म को धोने से पहले। हर रोज शावर लेते हैं ना, और लिया करें, लेना भी चाहिए, फ्रेश हो जाता है इंसान। इसी तरह दिल को धोना है। आप और मैं जितना दिल धोते जाएंगे, आप देखेंगे आपको उसके अंदर अनवारे इलाही दिखेंगे, फिर आपको बसीरत मिलेगी बसारत से आगे उठकर। वलिसान का कबल यदईक। अपनी जुबान को भी धोना है अपने हाथों को धोने से पहले। इस साल के दौरे कुरान की ये यूनिक थिंग है कि आप जिस दिल के साथ रमज़ान में दाखिल होंगे ना, उससे नहीं निकलेंगे। वो दिल गोल्डन हार्ट बन चुका होगा, और जिस जुबान के साथ आप दाखिल होंगे ना, उस जुबान के साथ नहीं निकलेंगे। मेरे जहन में ऐसे आ रहा है जैसे एक टनल है। टनल में गाड़ी गई तो ब्लैक थी, और 2-3 किलोमीटर के बाद जब बाहर निकली तो वो वाइट हो चुकी थी। इज इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल। फिर आप जिस आंख के साथ दाखिल होंगे ना, आप उस आंख से नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब दिल धुल जाता है ना, तो आंख भी धुल जाती है, कान भी धुल जाते हैं, हर चीज धुल जाती है। और आप देखेंगे कि आपके दिल, जुबान, आंख और हाथ, सब कुछ से जो फायदा होगा वो क्या होगा कि आप अपने इर्द गिर्द वालों को नुकसान नहीं देंगे। ये जो फसाद फैलता है ना गुनाहों की वजह से और गलत कामों के करने की वजह से, वो नहीं होगा। आप अपने आप को एक महफूज इंसान बना लेंगे। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो किले के अंदर महफूज लोगों की तरह होंगे, यानी फिर आप लोगों को दुखाएंगे नहीं। और फिर हमने इस बात से भी डरना है, वाहज़िरन तकूना, और इस बात से भी डरिए कि कहीं हम उन लोगों में ना हो जाएं। उलाइकल्लज़ीना ला यनालुहुम, वो लोग जिनको नहीं पहुंचता मगर कहाँ से? मिन सियामिहिम, उनके रोज़ों से, सिवल अतशुवल जू। अल्लाह के नबी के एक हदीस का खुलासा है ये कि उन लोगों में से ना हो जाओ कि जिनको रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हर चीज़ रोज़ा रखती है। फरमाया कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं कि उनको रोज़े से सिर्फ भूख मिलती है, प्यास मिलती है, और कुछ रातों को जागने वाले ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ थकन मिलती है। तो रमज़ान में अपने दिलों का जायज़ा लेना है हमने, और आप देखेंगे कि जितना आप ये जायज़ा लेते जाएंगे, आपका अपने दिल को और संवारने को दिल करेगा। आप घरों में इन चीज़ों के ऊपर जितना गौर करें ना, घर गंदा हो जाए ना तो और ही गंदा होने को दिल करता है, और जब साफ़ कर लें तो क्या होता है? मैं एक ही जुमला बोल देती हूँ, घर वालों की शामत आ जाती है। पाँव नीचे नहीं रखना, ये इधर नहीं रखना, आज ही सफाई की है, इतने पैसे लग गए, कमर टूट गई, और न जाने क्या कुछ हम कहते रहते हैं ना। तो ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाना है। जब आप इन सारी चीज़ों को पूरे शऊर और फहम के साथ, पूरी मेहनत के साथ करेंगे, अपनी इस्तेतात को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह सुभान व तआला आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट गोल क्या है आपका? मेरा जाहिद नफ्स का भी शिद्दा ही। आपने नफ्स के साथ जिहाद कीजिए कि वहां शैतान ना रहे। जब कोई बंदा आपने नफ्स के साथ जिद्दोजहद करता है तो शैतान उसे मायूस हो जाता है, वो रास्ते छोड़ देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर जिस गली से गुजरते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं, शैतान वो रास्ता बदल लेता है। और आयत लिखी सूरत माईदा 35, यही रूट चल रहा है अभी तक। सारी आयतें तो नहीं दे सकती, लेकिन जितनी वक्त में मौजूद है गुंजाइश। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वबतगू इलैहिल वसीला। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डर जाओ और उसकी तरफ वसीला ढूंढो, उसका वसल पाओ, उसका कुर पाओ। वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, और उसके रास्ते में जिद्दोजहद करो ताकि तुम फलाह पा लो। क्या पता चला कि आपने मैंने अपने नफ्स के साथ जिहाद करना है। अपने दिल के अंदर छुपे हुए खानों में जो शैतान घुस जाता है ना, उसको निकालना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शैतान इब्ने आदम के दिल के साथ खेलता है। एक पूरी एनालॉजी है, कहीं अगर मौका हुआ तो दौरे कुरान में सुनाऊंगी आपको। अपने रब से नियत कीजिए, अहद कीजिए कि मैं अपने दिल को शैतान से खाली करूंगी, और इसके लिए मेहनत। वही बात के जो गंदे बर्तन को मांझने लगेंगे तो फिर मांझते मांझते वक्त लगेगा ना, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जितना ज़्यादा आप इस सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे, आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान होंगी। और उसके बाद आगे वाला जो लफ्ज़ इस वक्त मेरी आपके इस पूरे मौजू की जान है, वो सूरत माईदा आयत 54 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मैं यरतद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो कोई अपने दीन को छोड़ता है। अब दीन छोड़ने से मुराद हर चीज़ लगा ले, दीन का कोई भी काम छोड़ता है, नमाज छोड़ता है, दीन का काम छोड़ता है, रोज़ा छोड़ता है, या इस्लाम ही छोड़ देता है, कोई बात नहीं, शौक से छोड़ दे, अल्लाह को क्या परवाह है। फ़सौफ़ यातिल्लाहु बिकौमि युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, पसंद करीब अल्लाह ताला ले आएगा एक ऐसी कौम को जिनसे वो मोहब्बत करेगा और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। पहली खूबी होगी उनमें, यानी अल्लाह रिप्लेस कर देगा। और लिख लिए, फितरत का असूल है, रिप्लेसमेंट इज़ इंस्टेंट। साइंस में ये मैंने बात पढ़ी थी, कोई जगह जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हवा होती है। आप कानों में उंगली डालें या कानों के आगे हाथ रखें ना, तो आपको सांसा की आवाज़ आएगी, वैक्यूम बनता है। आज भी इस वक्त भी ये खाली जगह पे ऑक्सीजन और हवा की चीज़ें हैं ना, दांत एक निकल जाए और कुछ अरसे वहाँ कुछ ना हो, तो आप देखिए साथ वाले दोनों दांत टेढ़े होके वो खाली जगह को लेते हैं। फितरत का असूल है कि जगह बड़ी जल्दी फिलअप हो जाती हैं। बहुत ही शुस्ता उर्दू बोलने वालों की एक कहावत है कि बीवी की मौत शौहर के लिए कोहनी की चोट होती है। लगती अचानक है, चीख निकल जाती है और एक ही सेकंड में ठीक भी हो जाती है। यानी मर्द के लिए बीवी के बगैर रहना बड़ा मुहाल होता है, और अल्लाह ना करे कोई चली गई बीवी तो मर्द को चोट लगती है, लेकिन तीसरे दिन के बाद अल्लाह भी कहता है वो निकाह दूसरा कर ले, वो भूल भी बड़ी जल्दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए, कोई ये ना कहे कि मैं वो पुर्जा हूँ जिसके बगैर मेरा घर नहीं चलेगा, आज मरे कल दूसरा दिन। तो फितरत का असूल है, चीज़ें अपनी जगह से हटी, दूसरी चीज़ उसकी जगह आ जाती है। और अल्लाह कहता है कि अगर तुम दीन से हटते हो, वैसे मैं अपने ऊपर कहती हूँ ना कि मैं नहीं पढ़ाती आपको, तो अल्लाह कहेगा शौक से नहीं पढ़ाओ। आप कह लीजिए मैं नहीं सुनती, तो ना सुनिए। जगह तो मैंने कभी खाली नहीं देखी कहीं भी, कोई कुर्सी कमी खाली हुई है अल्लाह की रहमतों से। तो आपने, मैंने इंशाल्लाह इस बात को अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाना है कि मुझे जिस नेकी का मौका मिल गया, बाद की बातें तो बाद में आती हैं, ये मिलता ही बड़ी मुश्किल से है, कुर्सी नहीं छोड़नी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के पास बहुत है। और फिर अल्लाह कहता है मैं उनको ये काम दूंगा जिनसे मैं मोहब्बत करूंगा और वो मुझसे करेंगे। अगली खूबी, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनों के मामले में बड़े सॉफ्ट होंगे, रबिश नहीं होंगे, रूड नहीं होंगे, गुस्से वाले नहीं होंगे, एहसान जतलाने वाले नहीं होंगे। और इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, हाँ कुफार पे सख्त होंगे। अब वो क्या है, वो इस वक्त आपका काम नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन युजाहिदू नफी सबीलिल्लाह, इस लफ्ज़ पे आपको लाना चाह रही थी, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने वाले होंगे, रातों को जागने वाले होंगे विदाउट एनी एफिलिएशन, बगैर किसी नाम के, कुछ नहीं चाहिए उनको, बगैर किसी पैसे के। उनको तो ये पता है कि ये जागना हमें कल कब्र में सुलाएगा, नम कनौ मतिल उरूस की तरह। सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। तो आज इस दुनिया में मेहनत कर लीजिए, जिद्दोजहद कीजिए, और मैं कह सकती हूँ कि अल्लाह करेगा कि आखिर तक ये सारा प्रोजेक्ट कामयाबी से जाए, रात और दिन के फ़र्क के बगैर मेहनत है इस प्रोजेक्ट के पीछे। और यहाँ अगर मैंने अपने प्यारों की बात ना की तो मैं खुश नहीं होंगी अपने आप से। आपको मेरी आवाज़ आती है ना, जो भी लोग बाहर से सुनते हैं और जो भी सामने हैं। आप मुझे अगर दुआओं में शामिल रखते हैं ना, और मेरे माँ बाप को देते हैं, तो हमारे उन साथियों को भी दिया करें जो बिहाइंड द सीन हैं या फ्रंट पे हैं। और हमारे एडमिन्स, दिल से प्यारे प्यारे एडमिन, जिम्मेदारान, और इसी तरह से अंसारुल्ला, जिनको कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि कबूल कर लिए जाएं, और जिनको मैं दिन रात देखती हूँ, जो जाहिदून फी सबीलिल्लाह में। शायद मैं भी कहीं जाके सो रही होती अगर मेरे पास इतने प्यारे साथी ना होते। और ये इतना बड़ा एहसान है अल्लाह का कि इसके ऊपर सर जमीन से ना उठे ना तो काफ़ी है। तो उन सब के लिए इस वक्त भी नाम लिए बगैर, जिसने एक क्लिक भी लगाया, जो एक कुर्सी भी सीधी करता है, जो एक कदम चल के भी आता है, और जिसने सिर्फ अपना कंप्यूटर भी ऑन किया है, ए अल्लाह, तो उनको उससे ज़्यादा अजर देना जो तूने किसी के लिए भी रखा हुआ है। मेरी गलतियों पे मुझे माफ़ कर देना, उनको ना पकड़ना। तुझे जिद्दोजहद मुबारक हो। रमज़ान यही सिखाता है। अल्लाह के नबी और सहाबा ने जो किया, आप सबको भी बता दूँ, सहाबा की तस्बीहों और उनकी तहज्जुद और तस्बीह नमाज़ों का तذکرہ बहुत कम मिलता है आपको कुरान में। उन्होंने नबी सल्लम के साथ इस जिद्दोजहद में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से इस्लाम गालिब हो गया था। तो आज के दौर का सबसे बड़ा काम, इस गिरते पड़ते इस्लाम को उठाइए। आज इस कुरान को उठाकर अपने हाथों में रखिए, सीने से लगाइए, और फिर उसमें वला यखाफून लौमत लाइम, किसी मलामत वाले की मलामत से नहीं डरते, डरना नहीं है, और इसमें अपने ही मलामत करते हैं। मुखालफत दुश्मन करता है, बंदा तैयार होता है, दिल में कुछ चुभन होती है ना तो हमेशा ऐब दिखते हैं। कुछ लोगों को 100 खूबियों में से एक खामी दिख जाती है, ये भी बड़े कीमती लोग होते हैं, इनको कभी ज़ाया ना करें। लेकिन कुछ प्यारे होते हैं अपने, वो मलामत करते हैं, ये क्या हो गया तुम्हें, ये शक्ल देखिए, ना तुम्हें खाने की होश है ना पीने की। कोई कहेगा मोटे हो रहे हैं, बैठ बैठ के मोटे हो गए। कोई कहता है ये घर को देखो ज़रा, मियाँ दूसरी शादी कर लेगा और तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। लिख लीजिए, जो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के दीन को पकड़ते हैं उनके बच्चे कभी नहीं बिगड़ते। मुझे तो इससे उलट पता है। सूरह कहफ में ये बात अब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र के दौरान, कि माँ बाप की नेकियाँ बच्चों को उनके जाने के बाद भी फ़ायदा देती हैं। आप अल्लाह के दीन को अपना एक बच्चा बना लें और अपने बच्चों को भरपूर तरीके से वक्त देकर साथ रखिए, आपके बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। मिसाल दे के चलती हूँ आगे नए लोगों के लिए, कि एक औरत है, उसका बच्चा है और बड़ी थकी हुई है, बच्चा भी रो रहा। बेल बची, एक औरत आई, डोर खोला तो दो खवातीन खड़ी हैं। एक कहती है कुछ दे दो, भीख मांगती है। ये अंदर जाएगी, 100 क्रोन का नोट निकालेगी, जाके उसको दे देगी, वो चली जाएगी। अब ये दूसरी की तरफ मुतवज्जो होकर पूछती है कि आप कौन हैं? तो वो कहती है कि मेरे पास बहुत सारा वक्त है और मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं किसी के बच्चे को बहलाऊं, तो अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा आराम कर लें तो मैं आपके बच्चे की टेक केयर कर लूं। अब वो पहले थकी भी थी, कहती आप अंदर आ जाएं। अब वो देख रही है, वो उसके बच्चे को प्यार से उठाती, रखती, उसको खिलाती, नहलाती, धुलाती। एंड ऑफ द डे क्या होगा आपको पता है? वो पहली को उसने 100 क्रोन दिए थे, इसको क्या कहेगी? इसे कहेगी आपके इस वक्त होता है, ऐसा करें आप रोज़ आ जाए, मैं आपको काम देती हूँ। फिर वो उसको पक्का काम दे देगी, और कोई पैसों के बगैर तो नहीं देगी ना, अल्लाह का ये मामला है। आप किसी के बच्चे की टेक केयर करें तो वो आपको भीख नहीं देता, इज्जत देता है, मान देता है। तो जब आप अल्लाह के दीन को थामते हैं ना, और जब लोग ठोकरों में रखे, आज ठोकरों में दीन इल्ला माशाल्लाह, तो अल्लाह के हम बड़े दर्जे हैं, इसकी इस वक्त तो बात की गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यूतीही मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, और ये अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहे दे और वो वसी इल्म वाला है। तो इंशाल्लाह इस सफ़र में आपको जो मिलने वाला है वो ये है कि आपने खूब मेहनत करके शैतान को अपने आप से दूर करना है, और जितना ज़्यादा आप इसमें संजीदा होते जाएंगे अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। नेक्स्ट थिंग जो हमने करनी है, जद्द तौबा तक अपनी तौबा की तजदीद करनी है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह करते हैं, कुछ खुद करते हैं, कुछ हो जाते हैं। पहली किस्म है गुनाहों की, यानी विलिंगली और नॉन विलिंगली। इसी तरह कुछ ज़ाहरी गुनाह, कुछ बात नहीं, कुछ हकूकुल्लाह से मुतल्लिक, कुछ हकूकुल इबाद से, कोई बात नहीं, इंसान है ना, उससे गुनाह होते हैं, डोंट वरी। मट्टी में चलेंगे तो पाँव पे मट्टी तो पड़ेगी ना, करें क्या, आगे जाएं मट्टी खुद ही झड़ जाएगी। तो रमज़ान और दौरे कुरान आपको मुझे ये सिखाता है कि एक बार फिर अपने रब के साथ अपने मामले को खूबसूरत कर लो, और उसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि तुम तौबा करो। और अगर आप इस बात को इस जिद्दोजहद के साथ रखें कि ये कैसे होती है, यानी तौबा करने में क्या जिद्दोजहद है, तो लिखिए सूरत अलनाम 109, 109 अलनाम, वक्समु बिल्लाहि जहद ईमानिहिम लैन जात हम आयत लयुमिनुन्न बिहा قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون। उन्होंने पक्की पक्की कस्में खाई किस बात की, अल्लाह के नाम की, कि अगर हमें कोई एक निशानी और दिखा दी जाए ना तो हम फौरन ईमान ले आएंगे। किस पर, कि ये नबी सच है और ये दीन का काम बहुत अच्छा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी को कि आप इनको कह दीजिए कि निशानियां तो भाई अल्लाह की तरफ से आती हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, हाँ जब वो आ जाएगी तुमने मानना फिर भी नहीं है। ये है स्टबननेस। गुनाह हमेशा ढिठाई से होते हैं, हम ढीठ बन जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए कुछ टिप्स हैं। पहली क्या चीज़ होगी, अपने गुनाहों की लिस्ट बनाएं। जुनूब, उक्तुब कायमतु बिज़ुनूब वल उयूबुल्लती, अपने गुनाहों की और अपने ऐब। ऐब क्या होते हैं, शॉर्ट कमिंग्स। आपने इस सफ़र में ये भी काम हमारे साथ करना है, जो मेरी कमियां हैं, हर एक में होते हैं, गुना भी होते हैं। जम की जमा, जम कहते हैं टेल को, दुम, यानी जैसे जानवर के साथ दुम लगी होती है ना, इस तरह हमारे साथ गुना लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे, हम अपने गुनाहों की लिस्ट बनाएंगे, अपने ऐब जो भी हैं, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, क्या, कि अल्लाह इनसे जान छुड़ा दे। बेअंत तखल्लस मिन्हा, यानी हमने अपने गुनाहों को छोड़ने के अंदर जिद्दोजहद करनी है। समझ आ रही है जिद्दोजहद की कोशिश, मेहनत करनी है अपने गुनाहों को छोड़ने पे। और फिर उसके बाद आपने जो काम करना है वो कैसे करना है, कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो, अपने गुनाहों के इश्तिहार नहीं दिए जाते, अल्लाह से चुपके चुपके दुआ करनी है। तरीका क्या है इसका, नेक्स्ट थिंग, चलिए खुजिल किताबा बिकुवा, 2 दफ़ा है ये आयत कुरान में, पकड़िए इस किताब को कुव्वत के साथ। बनी इसराइल के तनाजर में भी है और आगे भी है, इस किताब को कुव्वत से थाम लीजिए। कुव्वत से थामना क्या है, दोनों हाथों से थाम लो, और खुदा ना खास्ता गिर जाए तो फिर उसको तोल कर उसके वज़न का आटा दे दो। हमारे इंडो पाक कल्चर में कुछ इस तरह की बातें शोशों के तौर पे आम है। खुजिल किताब आ बिकुव्वा का मतलब क्या है, हर किस्म के हालात और हर किस्म की मुश्किलात में भी किताब नहीं छोड़नी। टिश्यू पेपर की तरह इस किताब को नहीं पकड़ना। और आप चूंकि दौरे कुरानी की बातें हैं तो उसी को सिंबॉलिक बनाइए, इस दौरे कुरान को थाम के रखना है। देखिए ना, बीच में जो चीज़ छोड़ दी उससे क्या मिला आपको, मुझे नहीं, आपने, मैंने, इंशाल्लाह ताला उसको लेना है। किस एंगल से, बेहतरीन तरीके से लेना है। तो किताब को खुजिल किताब अबिल कुव्वा का एक जो स्लोगन आपको इस साल दिया जा रहा है सीखने के लिए, उसका मतलब ये है कि आंधी हो के तूफान हो, इस किताब का साथ ना छूटे। इसके लिए आप रोज़ एक सफ़ा पढ़ें, दो पढ़ें। अगर ये दौरे कुरान ही आपके लिए गोल बन गया तो जो बात कही जाएगी आप उसको नोट करते जाएंगे। और इसके फिर बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं, जो तदब्बुर के, गौर व फिक्र के, अमल के नुक्ते, डूस डोंट्स, अल्लाह के नाम, ये सब चीज़ें आपको पारे के दौरान प्रैक्टिकल दी जाएंगी। बस दिल गर्म हो जाते हैं, अपनी इसलाह की तड़प लग जाती है। और इस काम को करने के लिए जो चीज़ एनर्जी देती है, जिस चीज़ से आपको फ़ायदा होता है, वो क्या है कि आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से दूसरों के लिए नफ़ामंद बनाते हैं। आप जब किताब को थाम लेते हैं ना, तो फिर आप उसको कैसे लेते हैं, अपने साथ दूसरों को भी उसकी दावत देते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है कि किताब को लेने के बाद मनाजात करनी है, अल्लाह के आगे झुकना। कोई मुद्दत मुअय्यन कीजिए जिसमें अपने आप को खाली कीजिए अपने रब के लिए। और मनाजात पता क्या है, तब तक मांगिए जब तक गला खुश्क हो जाए और आंख गीली हो जाए। मनाजात ये होती हैं कि दिल में तड़प हो, दिल में नदामत हो, शर्मिंदगी हो, जुबान पे या रब्बी या रब्बी या रब्बी, यानी मंगते बनकर मांगे, आंखों में आंसू हो, दिल में तड़प हो और दिल ना भरे। ये मनाजात है कि अल्लाह मैं किधर जाऊं, कोई निजात देने वाला नहीं। और लफ्ज़ निजात है इसमें, यानी जब तक निजात ना मिल जाए उस चीज़ से काम नहीं छोड़ना। और मेरे ज़िम्मे आता है बीमार के घर वाले, हॉस्पिटल में मिन्नतें तरले डॉक्टर्स के आगे, हाय इसको देख लें, हाय ये कर लें, इसको ना हो जाए। तो आपने इंशाल्लाह मनाजात करनी है, कुछ ना कुछ टाइम, दिन का 5-10 मिनट बिल्कुल खाली, जैसे हजरत मूसा अपने आप को खाली करके कोहे तूर पे अल्लाह के सामने पेश कर देते हैं। और ये खलवत लाजमी होती है। और जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर इबादत करते थे, क्योंकि व तबत्तल इलैहि तबतीला, जब तक ये नहीं होता तब तक बात नहीं बनती। नेक्स्ट टिप लीजिए, कसरत सुजूद, सजदों की कसरत कीजिए। इसलिए कि सहाबा की यही खूबी थी, आज हम अपनी हिकमत बालिगा में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। कसरत सजूद क्या है, जाहिर में बंदा सबसे ज्यादा झुका होता है, जमीन पे चला गया ना, नाक रगड़ने लग गया, माथा नीचे आ गया, सीमा हुम मिन असर इस सुजूद, लेकिन एक्चुअली बंदा सबसे ऊपर होता है, क्योंकि वस्जुद वक्तरिब। एक बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब कब होता है, जब वो सजदे में होता है। अक्रबु मा यकून अल अब्द मिन रब्बी वहुवा साजिदुन। और उस सजदे के अंदर आपने फिर अल्लाह के आगे अपनी हाजात रखनी है। सजदतु लिल्लाही, सजद लिल्लाही वजही लिल्लाहु, एक से एक खूबसूरत दुआ है। और जब बंदा अल्लाह के आगे सजदे में सर रखता है ना, तो अल्लाह ताला उसके दर्जे भी बुलंद करता है और उसकी ख़ताओं को, उसकी गलतियों को भी उससे दूर कर देता है। और फिर जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह देते रहेंगे ना, आपके अंदर खैर भरेगी। फिर अगली टिप लीजिए, और वो क्या है कि अल्लाह को पहचानने की कोशिश करनी है। अक्रबन्नास इलल्लाही आरफहुम बिही, पूछा कैसे वकई फजाली का, तो उसका तरीका क्या है, अल्लाह सुबहाना तला के नामों पे गौर व फिक्र करके। बिदरासती अस्माउहू वखासतु वखासतुल अस्माउ, उसके खास खास नाम, जैसे आप देखिए अलवितर अकेला है, अलमुकीत हम पढ़ चुके हैं ये भी, जितना अलस्माउल हुस्ना पे गौर कर सकें करें। उसके लिए हमारे नए साथियों के लिए ये है कि इंशाल्लाह ताला रमज़ान के दौरान भी, ये कमिंग मंडे से भी, हर दिन 11:30 से 2 o'clock का टाइम तो हमारा ये सुबह के सेशन का है, जिसके दौरान दौरे कुरान हुआ करेगा, और शाम के वक्त पे हमारा आजकल का जो वक्त है उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे, 5 to 6 नॉर्वे का टाइम, अलस्माउल हुस्ना होगा। और ये होगा मंडे से थर्सडे, यानी 4 days, 3 days आपके शाम के ये सीरीज़ नहीं होगी। तो अल्लाह के बारे में जानिए, जानिए अफहमन अल्लाह, अल्लाह को समझिए, क्योंकि वमा कदरुल्लाह हक का कदरी, अल्लाह ताला को जाने बगैर हम उसकी कदर का हक भी नहीं देते। नेक्स्ट थिंग चलिए, दुल अलल खैर, लोगों को खैर की दावत दीजिए। दुल्ला का लफ्ज़ है दलालत से, आपको तो पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बोलते हैं और इंडिया में भी बोलते हैं कि दलाल, दलाली कौन करता है, थर्ड मैन, एक बेचता है खरीदता है, तीसरा बीच में मिडल मैन, तो मिडल मैन बन जाइए खैर की तरफ बुलाने वाले। पहले तो कोशिश कीजिए कि आप खुद सालेह बन जाएं और उसके बाद फिर मुसलेह बन जाइए, और उदु इलल्लाह ही अल्लाह की तरफ बुलाइए, क्योंकि वमन अहसन कौलम मिम्मन दुआ इलल्लाह, उससे अच्छा और कौन है जो अल्लाह की तरफ दलालत करे, अल्लाह की तरफ बुलाए। और अल्लाह ताला कहते हैं वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, लोगों के साथ हुसन से अच्छे तरीके से बात करो। और खैर की तरफ बुलाने के लिए सिर्फ कुर्सी मेज नहीं सजाना पड़ता, अमली मैदान है, हाथ थामना पड़ता है। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारी एक निगाहे करम के मंतज़र होते हैं, हमारी एक प्यार भरी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के मरहूने मिन्नत होते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन तक अभी ये कुरान नहीं पहुंचा, मान दें। आयत लिखिए फिर आपको बात समझाती हूँ। यही लफ्ज़ जोहद का है, जितनी आयतें दे रही हूँ आज सब जोहद से हैं। सूरत अल अनफाल 72, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वह हाजरू और उन्होंने हिजरत की, वह जाहदू बी अमवालिहिम वानफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और जिद्दोजहद की, जिहाद किया, मेहनत की, कुछ भी कह लें, अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह के रास्ते में। ये कौन है? मुहाजरीन मक्का, जो अपने घर बार छोड़कर मक्का से मदीना आ गए थे, टैक्स के अतबार से बता रही हूँ, और जिन्होंने सूरह अनफाल पढ़ी है वो तो वैसे ही समझ गए। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह के रास्ते में एक मुकाम ऐसा आता है कि बंदा चीज़ें ले ले के फिर रहा होता है कि अल्लाह कबूल कर लेना, क्यों नहीं मौका आ रहा कि मैं अपनी चीज़ दूँ। शुरू का मरहला कहता है हाय मांग ना ले कोई अल्लाह हमसे, 2.5% ही बड़ा मुश्किल लगता है, 97.5 पे तो हकी कोई नहीं अल्लाह का, नऊज़ु बिल्ला। लेकिन एक वक्त आता है कि तू बचा बचा के न रख इसे कि तेरा आईना, तेरा आईना, तेरा दिल का बर्तन, इसको बचाया ना कर, अल्लाह से अपनी चीज़ें बचाया ना करें, क्योंकि शिकस्त हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। तो मुहाजरीन वही लोग थे जो सब छोड़कर आ गए, कोई चीज़ उनके पाँव की बेड़ी नहीं बनी बल्कि व्हील्स ही बने। ये दुनिया जो है ना, जिसपे हमने रविया कल्बी के आखिरी दिन पे, यानी कल जो हुआ है लास्ट डे डे फोर, उसमें बात की थी, दुनिया दुनिया दुनिया, ये दुनिया अल्लाह के लिए देनी उस वक्त आसान होती है जब दिल बदल जाए। तो ये तो है पहला गिरोह। दूसरा, वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका बादुहुम औलियाउ बाद, वो लोग जिन्होंने पनाह दी और मदद की, ये लोग हैं बाज़ उनमें से दोस्त हैं बाज़ के, ये हैं अंसारे मदीना। और आगे भी कुछ लोग हैं, लेकिन इसमें आपको मेरे लिए एक बड़ी खूबसूरत एनालॉजी है। देखिए, जब नबी सल्लम के दौर में जिद्दोजहद शुरू हुई थी ना, तो उस वक़्त ये हालात थे कि मक्का छोड़ना पड़ा, उन्होंने सब छोड़ दिया, तो मदीना आए तो मदीना वालों ने सब कुछ दे दिया। इस रास्ते में कभी सब देना पड़ता है और कभी सब लेना पड़ता है, ये दोनों मामले हैं। बचाया नहीं कुछ अंसार ने, और इन दोनों को कुरान कहता है साबिकून अव्वलून, सूरह तौबा की आई थिंक साइट नंबर 100 है, बस साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजरीन वल अंसार, या शायद सूरह अनफाल की, बहरहाल कोई भी दोनों में से देख लेंगे। आप बाद में क्या पता चला कि उस दौर में तो वो थे, उनको तो ज़रा सा पीछे कीजिए, आपके मेरे लिए दुल अलल खैर क्या है, आप ठुक चुकी हैं माशाल्लाह, आपको 10 साल हो गए बाज़ाब्ता तौर पे मेहनत करते जिद्दोजहद करते कुरान सीखने में, फिर सिखाने में, घर वालों को भी पता चल गया है कि ये नहीं रुकेगी, इसने जन्नत देख ली है, ये कैसे पलटे। अब वो मान चुके हैं, आपके बच्चे भी सुन चुके हैं कि अब मामा नहीं छोड़ेंगी, और अब वो आपको तंग भी नहीं करते, आपकी दोस्तों ने भी हार मान ली, वो आपको मेहंदी और उबटनों के बुलावे देती ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आप नहीं आएंगी, तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी होती है कि वो आपको ना बुलाएं, और अल्लाह करे ये मुकाम आपकी ज़िंदगी में जल्दी से आ जाए, ताकि ना वो शर्मिंदा हो ना आप हो। खैर, अब क्या हुआ, आप दुनिया में दीन की तरफ आ चुके हैं, लेकिन अभी कुछ लोग नए नए हैं, कांपते हुए डोलते कदमों से ऐसे कांपते हैं। किसी से बात मुलाकात थी किसी दिन पहले, तो दुनिया का कोई ऐसा काम था जो उसको करना था, तो हमने उसे कहा तुम इधर ही कर लो, स्कूल में आए हो। अब देखिए, मैं आपको मासूम बच्चों की बातें बताती हूँ जिनका कुरान पूरा नहीं गया ना, वो कितना डरते हैं दीन से और दीन वालों से। तो कोई काम था, मीटिंग थी, हमने स्कूल में बुला लिया। तो बीच में कहने लगा कि मेरी एक अपने काम के सिलसिले में मीटिंग है। तो हमने उसे कहा कि आप जाके अंदर कर लीजिए, नेट पे करनी है। तो कहेंगे नहीं, ये स्कूल है। यानी उसको ये गिल्ट लग रहा था कि स्कूल में बैठकर मैं कोई अपना ऐसा जाती काम करूं तो मुझे गुनाह ना होगा। इतना मुझे प्यार आया उस बच्चे पे, इतना प्यार आया। देखिए, जो लोग कभी कभी नमाज पढ़ते हैं ना, वो जायनमाज की बड़ी इज्जत करते हैं, खुशबू भी लगाएंगे, उसको इत्र भी लगाएंगे। उन्होंने अब रमज़ान में निकालने हैं ना, धो धा के देखिए कैसे वो इत्र लगा के बैठेंगे। और जो बेचारे कभी कभी कुरान पढ़ते हैं ना, वो बड़े प्यारे जुजदानों में रखते हैं, सिल्क के, गोल्डन, मोती, सितारे, फिर उसको खुशबू लगा के वो ऊपर के रैक पे रखते हैं कि कभी कभी उतारना है तो एक स्टूल रखेंगे, हिल्ला रखेंगे तो उसमें से उतार, हिल्ले में ऊपर रख देते हैं ना। तो जिनके पास हर वक्त कुरान होता है वो कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। ऐसे लोगों को ढूंढिए। आज यहाँ लिखिए तो सही एक बात, आज से कल तक कम से कम 5 ऐसे साथियों को ढूंढिए जो आपको इतना नेक समझते हैं कि आपसे आप शक्ल ही नहीं मिलाना चाहते। आप उनके लिए कुरान है, हाथ लगाने से भी कहते हैं आपको हाथ लगा शेक हैंड कर लो, क्योंकि आप तो कुरान ही बड़ा पढ़ते हैं। ये फासले दूर कीजिए। आज के दौर के मुहाजिर वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ठुक चुके हैं, जम चुके हैं आप लोगों की तरह, जिनके घर वालों को भी सब्र शुक्र आ गया और वो साथी बन चुके हैं। देखिए, आपके घर वाले आपके साथी बनने के लिए तैयार होते हैं। ये आपका ज़रा सा ना कह लीजिए कि गैर हकीमाना तर्ज़े ताल्लुक होता है जो कभी कभी उनको रोक लेता है, तो घर वाले तो आएंगे। स्टीयरिंग जिसके हाथ में होता है, फिर पीछे वाले भी तो उधर ही मुड़ते हैं ना। और अगर औरत और फिर मर्द मिल जाएं, दोनों मिल जाएं दीन पे और दुआ करती हैं अल्लाह आपको आपके घरान वालों के साथ, घर वालों के साथ दीन से जोड़ दे, तो फिर आप देखिए कि बच्चे तो आएंगे। ये नहीं हो सकता आधी गाड़ी आगे से एक तरफ मुड़े तो आधी उधर। और आपने जन्नत देख ली है तो चलती ही जाइए, चलती ही जाइए। आप देखेंगे आप जितना आगे जाएंगे ना, पिछले और आगे आ जाएंगे, और आगे आ जाएंगे। शौहर आपके साथ शॉपिंग पे गए और बात भी है पाकिस्तान या इंडिया की, एक तो बेचारों ने वो घुपला मुपला सा आपका बच्चा पकड़ा हुआ है जो उनका भी है, साथ वो आपकी बास्केट भी पकड़े फिर रहे हैं, और आप आगे से, वो कहते हैं बेगम बस ख़त्म और नहीं चलना, घर चलो बस। आप कहे हाँ बस। इतने में आपकी नज़र पड़ती है दूर एक वो लटकता फुदकता खूबसूरत ब्रांडेड जोड़ा। आप भूल ही जाते हैं कि मियाँ साहब क्या धमकी दे चुके हैं, और ये पहली धमकी नहीं है, ये कोई दूसरी तीसरी धमकी है कि बस अब मैं आगे नहीं जा सकता। पर आपने वो जोड़ा देखा, आपको याद ही नहीं रहा कि मियाँ कौन और बच्चा कौन, आप फौरन उस दुकान की तरफ लपक गए। अब देखा, देखते इफ्सान करते ये रंग डिज़ाइन, एकदम आपको ख्याल आता अरे मैं तो इधर आ गई हूँ, तो मियाँ साहब तो मेरे उधर हैं, हाय हाय पता नहीं किधर हैं, चले ही ना गए हों। आप जूं ही घबरा के पीछे जाती हैं तो क्या होता है फायजा, वो गरीब पीछे आके खड़े होते हैं। वो उस बंदे की क्या मजाल है कि आपको वो बाजार में या मॉल में छोड़ के वापस आ जाए, वो चारों नचार आपके पीछे चल रहे होते हैं, उनको पता है इसने जोड़ा लेके जान छोड़नी है, चलो लेके ख़त्म करो, ऐसे ही होता है ना। अब आप बताइए, एक जोड़ा देखने वाली खड़ी रही तो मियाँ भी बेचारा मजबूरन पीछे आ गया। तो जिसको जन्नत दिख गई, जिसके सामने अल्लाह की वो नेमतें और वो सुकून कल्ब की दौलत है, अगर वो जमी रहेगी तो क्या उसका रब उसको नहीं थामेगा। थमे रहिए। इस बीरू वसा बीरू वरा भी तू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अभी आपने तिलावत सुनी है सूरह आले इमरान की आखिरी आयतों की। जमे रहिए और वतवासो बिल हक़ी वतवासो बिस सब्र। तो आज के दौर के अंसार वो हैं जो नए नए दीन की तरफ आना चाहते हैं। डोंट बी हार्श विद देम, ताने ना दें, इल्ज़ाम ना दें, बेतकल्फी में ये भी ना कि तुमने नहीं आना, तुम्हारे तो नसीब में हिदायत है ही नहीं, देखना मैं अकेली जन्नत में चली जाऊंगी, कभी ना कहिए, प्यार से बुलाइए। ये है दुल्लल अलखैर। और इंशाल्लाह आप देखेंगे दुआओं के साथ ये काम आसानियों से होगा। नेक्स्ट टिप पे चलिए, कसरत तनफुल, नफिल कसरत से पढ़ने हैं इस महीने में इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह के नबी की ज़ुबान से हदीसे कुदसी के अल्फाज हैं कि वमा ज़ाल अब्दी يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. میرا بندہ میرا قرب پا لیتا ہے نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو آپ نے نفل پڑھنے ہیں. تو جہاد کس میں؟ جدوجہد کس میں؟ جہد کس میں؟ نفلی عبادات میں. کیونکہ ابھی جو میں نے آپ کو آیت دی ہے نا سورۃ الانفال کی 72، اسی طرح 74 آیت میں بھی وہی مضمون ہے. ابھی تک ہم پوری ترتیب سے ہر آیت کر رہے ہیں جو جس میں جدوجہد کا تذکرہ ہے. پھر اسی طرح سے سورۃ انفال کی آیت 75 میں بھی وہی مضمون چل رہا تھا جو ابھی ہم نے شروع کیا ہوا. لیکن آیت نمبر 16 سورۃ توبہ، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجتن واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے یہ سوچا ہے تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور حالانکہ ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں ان لوگوں کا جو جد و جہد کرتے ہیں تم میں سے. تو کیا پتہ چلا، اتنی جد و جہد کیجئے نوافل میں، اتنی کیجئے کہ آپ کا رب آپ سے پیار کرنے لگے. اور یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی پورا مہینہ انشاءاللہ تعالی. اور اس میں آپ ایک ایک چیز سے شروع کر سکتے ہیں، چاشت کے دو نفل، اور اسی طرح سے تہجد تو ویسی تراوی کی صورت میں ہم پڑھی لیں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ پہ چلتے ہیں، بہت ہی پیاری ٹپ ہے. اپنے دل میں سے دنیا کو نکالنا ہے، گول بنائیے. اپنے دل کو دنیا سے خالی کیجئے. اور اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بر کو، اور بر سے مراد نیکی، حسنا، جنت، رضا الہی اور اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں حدیثوں میں، نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی من پسند چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو. تو کیا کریں آپ؟ اللہ کے رستے میں اپنی کوئی ایک من پسند چیز دینے کی نیت کیجیے. جتنی توفیق ہے روز دے سکتے ہیں اتنا مجاہدہ زیادہ ہو جائے گا. ہر ہفتے میں ایک دفعہ کر دیجیے، پورے مہینے میں ایک دفعہ نہیں تو، اور ہر روز کر دیجیے، یہ آپ کے اوپر ہے. اور کیا دیں گے جو آپ کو سب سے پیارا ہے؟ مال دے سکتے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے مال، اپنی سکلز دے سکتے ہیں، کھانے پینے کے وقت کو کم کر کے اس کو کسی اور نفع مند کام میں کی سکتے ہیں، اپنا من پسند کھانا دے سکتے ہیں، اپنے وہ کپڑے ملابس جن کو آپ پیار کرتے ہیں اور چومتے ہیں اور ان کو ہینگ کر دیتے ہیں اپنی محبت میں، کچھ نہ کچھ تو اللہ کے لیے دیں. کیونکہ دل کو خالی کرنا ہے. جتنا دل کو خالی کرتے جائیں گے اتنی اللہ کی محبت دلوں میں آتی جائے گی. سورۃ توبہ آیت 19 میں بھی یہی بات ہے، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یعنی کمن آمن باللہ والیوم الآخر وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی صرف ظاہری نیکیاں کرنے والے کیا تم نے گمان کیا؟ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے والے کے کام کو اس کے برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لا کر یوم آخر پر ایمان لائے اور پھر اللہ کے رستے میں محنت کرے؟ نہیں، دونوں برابر نہیں اللہ کی نظروں میں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ محنت کرنے والوں کو وہ ضائع نہیں کرتا. اور آپ نے انشاءاللہ اللہ کے رستے میں یہ مجاہدے کرتے ہی جانا ہے، کرتے ہی جانا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے لن تنالوا البر کا یہ سبق خون کے رشتوں میں بھی آتا ہے. لکھیے سورۃ توبہ آیت 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم سے ایک لمبی لسٹ ہے، سکپ کرتے ہوئے آخری حصے پہ آؤں گی. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یعنی کہہ دیجئے کہ तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे जोड़े यानी शौहर या बीवी, और तुम्हारे कुंबे कबीले वाले, और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए, और वो तिजारतें जिनके मंदा पड़ने से तुम डरते हो, और तुम्हारे वो घर जिनको तुम पसंद करते हो, ज़्यादा प्यारे हैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसके रस्ते की जिद्दोजहद से, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला ले आए, और अल्लाह नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। तो लन तनालुल बिर्रा पे ज़रा से इस आयत को जाकर सोचिएगा कि ये कैसे मुंतबिक होती है। यही वो चीज़ें हैं जो पाँव की बेड़ियाँ हैं, रिश्तों की ये तराजू हमारी अमूमन गलत तरफ ही झुक जाती है। तो इंशाल्लाह एक एक चीज़ को साथ लेके चलना। नेक्स्ट पे चलिए, और वो क्या है, जाहिद हवा का, ख्वाहिशों से जिहाद कीजिए। आज आपको समझ आ रहा होगा कि ये लोगों ने जो लफ्ज़ बदनाम कर दिया वो कितना गलत कॉन्सेप्ट दे दिया। लफ्ज़ जिहाद आते ही जहन में तलवार, हालांकि हमने ऐसी एक बात नहीं अभी की, और हम कितनी देर से बात कर रहे हैं इस मौजू पे। तो सबसे पहला जिहाद ख्वाहिशों के साथ होता है। कैसे? लाल इन नौमिल कसीर, ज़्यादा नहीं सोना, सोने की ख्वाहिश होती है। ये भी बिर में आता है, लन तनालुल बिर में। इंसान को सोना बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा, औरतों को दोनों ही सोना प्यारा लगता है, सोना टू स्लीप और सोना गोल्ड। और मज़े की बात है कि गोल्ड को अरबी में जहब कहते हैं, और जहाबा का मानी जाना, यानी सोना है ही जाने वाली चीज़। जो सोता है वो भी खोता है, और जो सोना है वो भी जाएगा, फिर भी दोनों चीज़ों के पीछे इंसान भागते हैं। फिर इसी तरह ज़्यादा वक्त टीवी पे नहीं गुजारना, बेकार चीज़ें, खबरें पता लग जाएंगी आपको, इतना कीमती वक्त है। आप देखिए, जब दिहाड़ी पे कोई गया होता है या जिनका सीज़न होता है, वो तो खाना भी नहीं खाते। तो ये रमज़ान जो आपके मेरे पास आ रहा है ना, ये सीज़न है। एक एक मिनट कई के हज़ारों मिनट में बदल रहा है, नफिल फ़र्ज़ में बदल रहा है। तो बेकारियात में वक्त ज़ाया नहीं करना। फिर इसी तरह गीबा नहीं करनी, गीबत, लाहवल हदीस, बेकारियात, वो कोई भी नाम आप दे लें, और मैंने वक्त ज़ाया नहीं करना। और इन सब के पीछे क्या होगा कि आपको अपनी ख्वाहिश पे काबू पाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस बारे में अपने आप से वादा करेंगे ना, शिद्दत के साथ, जाहिद बिनफ्सिका बिशिद्दतिन, आपके अंदर जितना यकीन होगा ना काम करने का, शैतान आपका रास्ता खाली करता जाएगा। और अभी बैठ के वाहद रब्बक ला हाज़ल आन, अभी यहाँ बैठकर अल्लाह से इस बात की नियत कीजिए कि अल्लाह मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट शिप पे चलिए, और वो क्या है, इस्लाहुल मुआमलात, ख़ास तौर पे क्या, अल हुकूकुल लतीफ़ी रक़बतिक, वो हकूक जो आपकी गर्दन पे पड़े हुए हैं, जिसमें आपके घर वाले, आपके करीबी, यानी हर चीज़ जिसकी आप जिम्मेदार हैं। मर्द पे किफालत है, कवामियत है, आप अपने कंधों से इसको उतार के फेंकिए, आपके जिम्मे कोई कफालत की जिम्मेदारियां नहीं है। हाँ, आप सालेहा और कानिता बनकर घरदारी और बच्चों को अच्छे तरीके से टेक केयर कीजिए, घर के बुजुर्गों को देखिए। औरतों की यही शान होती है, उनके घर ही उनकी खूबी होती हैं। ये जो हम पढ़ते पढ़ाते हैं ना, ये इसलिए करते हैं कि हमें ये सब आ जाए। अंधेरे जो माशरे के दूर करने का शौक़ लेकर हम कभी पढ़ने पढ़ाने जाते हैं ना, तो उसका मकसद भी यह है कि जो औरतें बेचारी अच्छी माएँ और बहनें बीवियाँ नहीं बन पा रहीं, उनको भी सिखाएं और ख़ुद भी सीखें। तो अपने मामलों की इसलाह करिए, और ख़ास तौर पर फिर इसमें आपने एक नीयत करनी है, वो क्या है कि रूठे हुओं को मनाइए। चंद दिन अभी भी हैं रमज़ान के शुरू होने में, रूठों को मना लीजिए, कॉल कर लीजिए, बता दीजिए उनको कि आप उनसे प्यार करती हैं, और इंशाल्लाह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को जाने दीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, अद वमहू व इन कल्ला, जो काम करें उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें, चाहे वो छोटा से ही हो। और ये एक हदीस का टुकड़ा लिया गया, अल्लाह के नबी से पूछा गया था कि अल्लाह को बंदे का कौन सा अमल अच्छा लगता है, तो आपने फरमाया कि अदवामुहू व इन कल्ला, जो करे मुस्तकिल, चाहे वो छोटा ही काम हो। मसलन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी ने मेराज के सफ़र में उनके कदमों की चाप सुन ली जन्नत में। पूछा, बिलाल क्या नेकी करते हो? का कुछ ज्यादा तो नहीं। हाँ, जब वुजू करता हूँ तो दो नफिल पढ़ता हूँ। तो आपने कहा कि तेरे ये नफिल तुझे जन्नत में ले जाएंगे, तो हमेशा कामों को मुस्तकिल मिजाजी से कीजिए। कुछ लोगों का बस एक ही मसला है कि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं। कोई नया नया काम मिला, कोई नया प्रोजेक्ट सामने आया, कोई नई चीज़ शुरू, बड़े शौक से आगे आएंगे, और जब होश आता है तो सब छोड़ छाड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह हमने इस रमज़ान में कोशिश करनी है छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों को करने की। मसलन कैसे, सुबह शाम के अज़कार ना छूटें, सूरत मुल्क पढ़ना ना छूटें, रात को सोते वक्त के अज़कार ना छूटें। फिर इसी तरह से जो रमज़ान में रोज़े के दौरान नेकियां हम कर सकते हैं, जितनी मैक्सिमम करके रखिए। ऐसा ना हो कि आप कोई नेकी करें और दूसरे दिन छोड़ दें। नफिल पढ़ते रहे रात को शबीने के नाम पे और अगले दिन फजर भी कज़ा हो जाए, ऐसा नहीं करना इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जितना ज़्यादा आपको मुझे इसका फिक्र लगेगा उतना ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टिप पे चलिए, और वो क्या है, जन्नत को पाने और जहन्नुम से आज़ादी को अपना गोल बना लीजिए। फिक्रे आखरत अपने दिल में भर लें। दो लफ्ज़ पिछले साल भी बोले थे, अभी भी बोल देती हूँ। इल्मे आखरत सबको है। फिल्मों के नामों में और ड्रामों में भी कहते हैं जी क़यामत आने वाली है, ये इल्म है ओनली, इट्स जस्ट नॉलेज। इसको फ़िक्रे आखरत में ढालिए। फ़र्क दोनों का क्या है? आप किचन में काम कर रही, बच्चे ने आवाज़ दी, मामा शावर में उबलता हुआ पानी आ रहा है। एकदम आपको गड़बड़ तो लगेगी, परेशान तो आप हो जाएंगी, लेकिन आप खुद शावर में जाएं और बेख्याली में गर्म पानी सर पे पड़े, क्या दोनों में फ़र्क है? बस ये आखिरी जो बताया ना, ये फ़िक्रे आखरत है। अगर हमें जहन्नुम और जन्नत की हकीकत पता लग जाए तो फिर हम कभी भी इस इल्म को अमल में ढाले बगैर रहे ना। कहिए कि मैंने इस रमज़ान को जहन्नुम से आज़ादी का रमज़ान बनाना है इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अज़-ज़िक्र, कसरत से ज़िक्र, तज़क्कुर, मुज़ाकरा। हमेशा के लिए आपने आप को अल्लाह की याद में रखे, कभी सुबहान अल्लाह, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाह अकबर। आप ये सोच लें कि आपको सेल के दिन मिल रहे हैं, बाय वन गेट 69 फ्री, तो जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लेंगे, फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह उससे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि गिफ्तों से खुद ब खुद बच जाता है इंसान इस सारे मामले में। और ख़ास तौर पे आप जब अपने लिए गोल बना लेते हैं ना, तो फिर उसको हासिल करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलिए, और वो क्या है, अल इस्तेगासा बिल्ला, अल्लाह सुबहान तआला की पनाह में आ जाइए। आपने अपने रब को कहना है कि मालिक मुझे अपनी पनाह में ले ले। मसलन मेरे ऐप मेरे एक सामने तो खोल दे, लेकिन दूसरों को ना पता चले। अब की मिन खशियत ही, उसकी खशियत से रोना है और अल्लाह की पनाह में आना है। यानी आप ये कह लीजिए कि अपने आप को अल्लाह की पनाह में देते हुए शैतान से बचाना है इंशाअल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? रमज़ान की तैयारी की वसीयत अमली तौर पे दूसरों को भी करनी है। आज से लेकर रमज़ान तक के किसी भी दिन बैठ जाइए और घर वालों के साथ बैठकर इस पे कन्वर्सेशंस कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको और उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो काम मिलके किया जाए वो आसान हो जाता है अकेले करने की बजाय। फिर इसके बाद अगली चीज़ लीजिए कि ये यकीन दिला लीजिए अपने आप को कि रमज़ान गिनती की घड़ी है। अय्यामम मादूदात, दकायकुम मादूदात है। दकीका कहते हैं सेकंड को, लम्हा। इसको सही इस्तेमाल कीजिए। ये खैर का महीना है जो आपके मेरे सामने आ रहा है। आपने मैंने इसकी एक एक घड़ी का यकीन रखना है। और आपकी घड़ी अगर आपके पास है घर में कोई भी जिसमें सेकंड्स भी शो करे, उसको सामने रखिए। वक्त ज़ाया नहीं करना, बेकारियात में भी और मुबाहात में भी नहीं ज़ाया करना। जो काम बाद में हो सकता है उसको अभी नहीं करना। इंशाल्लाह बाद में करेंगे। और फिर इसी तरह से जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे ना, तो आप अल्लाह सुबहान तआला के साथ एक खुसर पुसर करें, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, नेमतों का यकीन दिलाइए। लिखिए अपने रब के साथ मनाजात करें और उसमें ये कहिए कि अल्लाह मैं सर से पांव तक नेमतों में डूबी हुई हूँ, तो मुझसे इनका हिसाब न लेना और इनको बाकी रखना। यानी अपनी नेमतों पे गौर करना है आपने मैंने, और जितना ज़्यादा आप इस पे गौर व फिक्र तदब्बुर करते कराते जाएंगे, आप देखेंगे कि नेमतों पे मोहर लगती जाएगी और अल्लाह ताला उसको ज़ाया होने से बचा देंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, नमाज को बेहतरीन तरीके से पढ़ना। चलिए हम एक छोटा सा गोल तो बना ही सकते हैं ना, 30 दिन तक मैंने कोई नमाज नंबर एक ना छोड़नी है, जल्दी में नहीं पढ़नी, गलत नहीं पढ़नी, फ़र्ज़ पढ़ती हूँ, सुन्नतें भी पढ़नी है। लेकिन कितनी अजीब बात है, अल्लामा इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर आपके सामने रखती हूँ, यानी कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू, नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। ऐसे ही है, लो तुम बैठो मैं भी पढ़ के आई, फिर मिल के देखते हैं, और फिर मिल के ये और वो। सबको पता जो मैं इशारा दे रही हूँ वो किसकी तरफ है, नमाजों की खूबसूरती। और फिर उसके बाद जो एक खूबसूरत गोल हम आपको देंगे, जस्ट गो थ्रू कराऊंगी क्विकली, हमारा इस साल का ये दौरे कुरान दिल की बातें हैं, और दिल तो दिल है और दिल की खूबसूरतियाँ लेनी है। आपको एक एनिमेशन दिया जा रहा है, इस दिल को एक उस शख्स का दिल समझ के बनाया गया जो सर से पांव तक गुनाहों में लुथड़ा हुआ था। हसद भी है, बुग़्ज़ भी है, रकाबत भी है, गैबत भी है, शिर्क भी है, गुनाह भी है। ज़रा सा यहाँ एक बिल्कुल खाली छोड़े अपने आप को, अपने आप को ज़रा सा इमेजिन करवाइए। लिखिए आप जो मैं जुमले बोलूँ ना, इसमें अपने देखना भी कुछ नहीं, सुनना बस और महसूस करना। जब रोज़े की कैफियत में होते हैं, सुबह तो हम खूब ठोस लेते होंगे, पराठे और दही और लस्सी, खाइए कोई हर्ज नहीं, इफ्तारी से 1-1.5 घंटा पहले या उससे भी कुछ पहले, मैदे की क्या कैफियत होती है, खाली होता है ना। आप मेडिकल की ज़ुबान से भी देख लीजिए तो 6 आवर में आपका खाया हुआ खाना या वो लुकमा पेट से साफ कर करा के इंटेस्टाइंस में जा चुका होता है। एक जुमला लिखिए, ऐसा ना हो मैदा तो यानी पेट तो खाली हो मगर दिल भरा हो। ये जो काला दिल आपको दिखाया जा रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, ये उस शख्स का दिल है कि जिसमें हर नेगेटिविटी है, निफाक है, अल्लाह के साथ भी, बंदों के साथ भी, रसूल के साथ भी, दीन के साथ भी, और हम उसी को ही गोल बनाएंगे। आप सब बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिदायत का सफ़र उस बंदे के लिए होता है जो सर से पांव तक गुनाहों में मुबतला है। यानी आप और मैं इसको अपना दिल समझते हैं, मैं ये बात पहली दफ़ा सुन रही हूँ, और मुझे तो इतनी बातें सुन के ये लगा मैं तो हर गुनाह करती हूँ। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी स्टेज आ जाती है कि बंदे को समझ नहीं आता किधर से शुरू करूँ। जैसे एक शख्स थे, सहाबी थे, उन्होंने अल्लाह के नबी से अपनी कुछ बुराइयों का तذکرہ किया, ये भी है वो भी है वो भी है, फिर कहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो कहा झूठ छोड़ दे। कहा अच्छा ये तो बड़ी छोटी बात है। खैर कोई भी खराबी की अगर आदत हो बंदे को, जिसमें कोई भी हो सकती है, अल्लाह के नबी ने पूछा वो काम किया था, अब झूठ तो बोलेंगे नहीं, जी तो जी कहते हुए शर्म आई तो नियत कर ली कि अच्छा आज के बाद वो काम नहीं करूंगा। अच्छा दूसरे दिन दूसरी वो किया था, जी, और झूठ ना बोलने के इरादे ने बड़े से बड़ा हर गुनाह माफ करा दिया। तो यहाँ से हम सफ़र शुरू करेंगे, 30 दिन में आपको इंशाल्लाह दिल के बारे में डेली टिप्स और चीज़ें भी देते जाएंगे। गोल क्या है, नेक्स्ट पे चलिए, काले दिल को सुनहरी दिल में बदलना है, गोल्डन हार्ट। अगर आपको मैं कहूँ कि मैं आपको एक सोने का दिल दे दूँ तो कितने लेना चाहेंगे, आप कहेंगे सोना नहीं चांदी का ही दे दे, आपका दिल गोल्डन हार्ट बन जाएगा। ये दिल है, आखिरकार दिल की हालत बदल जाएगी और आपका मेरा दिल ऐसा हो जाएगा। अब आपको मैं एक गोल दे रही हूँ, आज से आप आज से अपने दिल को ये काले और इसके डिफरेंट शेड्स के साथ हम देखेंगे, लेकिन कहीं भी किसी भी कैफियत का आपका दिल है, लेकिन दावत उसके लिए जिसको खुद लगता है मैं बहुत गुनाहगार हूँ। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आपको दिल की मुख्तलिफ कैफियत दिखा दी हैं। आपने अपने दिल को किस कैफियत में लेकर, लेकिन आखिरी गोल ये है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता दिया, और ये कैसे होना है इसको भी इंशाल्लाह हम अपने एक और सेशन में करते हैं। बीच में फ्यू मिनट्स का रिकैप हम करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल टिप्स और चीज़ों को हम कैसे लेंगे। अभी तो ये दुआ कर लेते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी। या अल्लाह, बेशक तू सरापाए माफ़ी है, तू माफ़ी को पसंद भी करता है, बस मुझे भी माफ़ फरमा दे, यानी मेरा दिल बदल दे। ये आपके मेरे दिल के बदलने की कहानियां हैं। और अब बताइए कि आप में क्या जोश है, कितने लोग सोच रहे हैं और क्या महसूस करते हैं कि किस किस को इस सफ़र में शामिल करने की और होने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम एक छोटा सा स्लॉट और लेने वाले हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बि नेमतिही ततिम्मु सालिहात। फ्रेश हो गए आप लोग? सच्ची बताए थके थे? ऐसे मैं बताऊँ आपको, जो बोलने वाला होता है ना, वो नहीं थकता। जैसे मैं अक्सर इसको इस तरह से रिलेट करती हूँ कि जब लॉन्ग रूट्स पे
ना
गाड़ी में जाएं,
सारे गाड़ी वाले सो रहे होते हैं, बल्कि खर्राटे मार रहे होते हैं, और ड्राइवर बैठा होता है। और कभी आप पूछें भाई से आप थके तो नहीं, वो कहते नहीं, नींद आ रही नहीं, क्योंकि उनका से गोल होता है ना, तो वो नहीं थकता जो के गोल बना के बैठता है। तो दौरे कुरान में नींद नहीं पूरी कीजिएगा। आपको चंद टिप्स भी अभी दे देती हूँ। सुबह उठ के शावर लें, और वार्म वाटर से लें, यानी गर्मी भी है तो भी ठंडे पानी से नहीं लें, क्योंकि आप देखते हैं कि जितना ज़्यादा आप ठंडा पानी लेते हैं ना, उतनी बॉडी स्टिफ होती है। और इसी तरह से टेक लगा कर इतने भी आराम से ना बैठिए कि फिर वो बैठ ही जाए। और बहुत सारी चीज़ें आप खुद जानते हैं, अपनी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी रखिए। और अगर फैमिली के साथ सुन रहे हैं तो दी बेस्ट सेटअप इज़ डाइनिंग टेबल चेयर, जिसमें सब एक दूसरे को देख भी रहे होंगे और उसमें इंसान वैसे भी कॉन्शियस रहता है। और इसी तरह से बाकी चीज़ें भी आप लोग अपनी मैनेज कर सकते हैं। अब इस स्लॉट में मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद दिलों के बारे में बता दूं, जो हमने टॉपिक शुरू किया वो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका सम अप करेंगे कि कुरान पाक और दिल और बाकी चीज़ें, यानी क्या है हमारा दिल और उसकी कहानियाँ। अभी इस पे मैं आपको कोई ऐसी बात भी नहीं दे पाती कि जिससे आप पहले ही वाकिफ़ हों, क्योंकि दिल में दिल की क्या हैसियत है इस जिस्म में और इस्लाम क्या कहता है, ये आप सबको पता है। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि वो बातें कहूँ और वो बताऊँ जो कि आपको नहीं पता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल खैर अनवाउल कुलूब फिल कुरआनिल हकीम। अईन कल्बुक, दिल की अकसाम कुरान पाक की रोशनी में, टाइप्स ऑफ हार्ट इन द लाइट ऑफ कुरआन। अईन कल्बुक, वेयर इज़ योर हार्ट। इस सीरीज़ का आज पांचवा दिन है हमारा। अभी तक हमने जो कुछ सीखा, ज़रा सा उसको गो थ्रू करते हैं। दिल बदले तो नसीब बदले, हकीकत भी यही है। किसी को अगर अपना नसीब बदलवाना है तो उसको दिल के बदलने की कोशिश और ख्वाहिश और तमन्ना करनी चाहिए, क्योंकि जब दिल बदल जाता है तो रुझानात बदल जाते हैं, और जब रुझानात बदल जाते हैं तो नसीब बदल जाता है, क्योंकि हम अपने ही हाथों मजबूर होते हैं और नुकसान जो होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है जो भी हमने सीखी, कि दिल की वो इकसाम जो अल्लाह सुबहाना ताला को बहुत पसंद है, यानी रहमान के पसंदीदा दिल कौन से हैं, अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है। इसमें हमने 8 किस्में देख ली हैं अभी तक। एक दफ़ा दोहराऊं, और ये सुनते सुनते आपको याद भी अब हो गई होंगी, क्योंकि जो चीज़ें अपने अंदर लानी होती हैं ना, उसको याद करते हैं। मतलब अगर आप दुआएं सुबह शाम पढ़ने वाली याद नहीं करेंगे तो कॉपी ढूंढते रहेंगे, बुक ही ढूंढते रहेंगे, तो हमें फिर इस तरह ना तो वो मज़ा आता है देख के पढ़ने में, और ना हम हमेशा उस पर हमेशगी कर पाते हैं। ठीक है, तो अल कल्बुस सलीम, सलामत दिल, हर बुराई से, हर गंदगी से, जिसमें हम बात पीछे कर चुके हैं, ये सिर्फ़ एक खुलासा है। फिर इसके बाद अल कल्बुल मुनीब, रुजू करने वाला दिल, जो अल्लाह ताला की तरफ पलट पलट के आता है, जैसे माँ का दिल न्यू बॉर्न बेबी में पड़ा रहता है, सोए को भी जा जा के देख रही होती है, अभी उठा क्यों नहीं, खुद सोई हो तो उठ उठ के देखती है। इसी तरह बंदे का दिल अल्लाह की तरफ पलट जाए, दीन की तरफ पलटे, उसको एक ही गम है, जो फोल्डर खोले, जो लिंक खोले, जो किताब खोले, वो कुरान से मुतल्लिक हो। दुआ कीजिए हम ऐसे खुशबख्त लोगों में हों। फिर अल कल्बुल मुखबित, इखबात वाला दिल, जिसके दिल में नरमी, चिंगारियों का बुझना, जैसे आग जलती है ना आखिर में, फिर हल्की हल्की चिंगारियां रह जाती हैं, फिर वो भी बुझ जाती हैं, बुझे हुए दिल, यानी कोई बड़ाई का शौक नहीं है, अपना आप कोई बड़ा करने का शौक नहीं, कोई सेल्फ प्रोजेक्शन का शौक और शौक नहीं होता ऐसे बंदे को। फिर इस तरह अल कल्बुल वजिल, नेकियां करके भी इस बात से डरने वाले कि कहीं हमारी नेकियां हमारे मुंह पर ना दे मारी जाएं। फिर इसी तरह से अल कल्बु तकीश, डरने वाले दिल, जो हर वक्त इस बात से डरते रहते हैं कि हमारा कोई छोटा सा अमल भी अल्लाह को नाराज़ ना कर दे। बाज़ सवाल लोग कहते क्या है, छोटी सी बात है, आप कहा करें जी बात तो छोटी है लेकिन नाफरमानी बहुत बड़े की है। आप देखिए कि कोई बात छोटी बड़ी अपनी जगह से नहीं होती, फ़र्क किस बात से पड़ता है कि कहने वाला कौन है। माँ बच्चे से पानी मांगे और बच्चा ना दे, और बाद में कि क्या था मामा पानी ही नहीं दिया ना, तो आप कहते हैं कि पानी की बात नहीं है, कहने वाली तुम्हारी माँ थी, इसी से समझ लीजिए। फिर कल्ब अल कल्बुल महदिश, हिदायत पाया हुआ दिल, अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी, कॉन्टेंट, क़ानेह, साबिर, और ये बन गया ना तो उस दिन से आपकी ज़िंदगी का रुख कैसे बदलेगा, आप कहेंगे मेरे सारे गम किधर चले गए, पता चला वो थे कोई नहीं, आपने खुद ही गले से लगाए हुए थे। जिसका दिल अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी हो जाता है ना, फिर वो तो अल्लाह ताला की रज़ा में आ जाता है। फिर इसी तरह से अल कल्बुल मुतमाइन, जिसको अल्लाह की याद में इत्मीनान मिलता है, उसमें सुकून मिलता है। और इस तरह से अल कल्बुल हैश, ज़िंदा दिल, और ज़िंदा दिल वो होता है कि जिस दिल में अल्लाह की याद होती है। फिर इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक था अल्लाह ताला के नापसंदीदा दिल, यानी दिल तो दिल ही होता है, काम अच्छे बुरे होते हैं, तो नापसंदीदा दिलों में अल कल्बुल आमा, अंधे दिल, हक का बातिल का फ़र्क नहीं पता, सही रास्ते पे चलना नहीं है। और फिर कल्बे मरीद, अल कल्बुल मरीद, बीमार दिल, रोग हैं दिल में, कह दीजिए रोगी दिल। फिर अल कल्बुल लाही, लहव में पड़े हुए, गाफिल, बेकारियात में पड़े हुए लोग। फिर इसी तरह से अल कल्बुल आसिम, गुनाहों में लुथड़े हुए दिल। पिछले प्रेजेंटेशन में आपको जो डिफरेंट दिल दिखाए हैं उसको देखकर एकदम हाथ पड़ा था दिल को, मैं कहाँ हूँ, इन्हीं में से कोई ना कोई कैफियत हुई तो इंशाल्लाह उस पे काम करेंगे, यानी आप सब के और मेरे दिल का इलाज होने वाला है इस दौरे कुरान में जो हम कल से शुरू कर रहे हैं। आपको लग रहा है कल से रमज़ान आ रहा है? कुरान शुरू हो जाता है ना तो खुद ब खुद बंदे का दिल दिमाग रमज़ान के मोड में चला जाता है, और इन दिनों को ज़ाया ना कीजिए, बड़ी कीमती घड़ी हैं। फिर अल कल्बुल मुतकब्बिर, बतर अल हक्की व गिमतिन नास, यानी अल्लाह ताला के हुक्म को छोटा और अपने आप को बड़ा समझने वाला दिल। ये आपको अगर डिटेल्स चाहिए हो तो हमने Day 2 में किया था। इसके बाद Day 3 में हमने 2 किस्म के दिल देखे थे नापसंदीदा दिलों में से ही। एक था अल कल्बुल मख्तूम, मोहर लगा हुआ दिल, जिस पे तबा लग चुकी, इसको अल मतबू अलैह भी कहते हैं। और मोहर कब लगती है? जब बात आखिरी किनारे पे पहुंच जाती है। फिर अल कल्बुल कासी, सख्त दिल, कसाबत कल्बी, सुम कसत कुलूबुकुम मिन बादी ज़ालिका, फिर तुम्हारे दिल इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। फवैलुल लिल कासियती कुलूबिहिम, ये सब पढ़ेंगे हम, इस पे आप यही कुछ तो सुनने वाले हैं इस रमज़ान में इंशाल्लाह। फिर इसके बाद डे 4 पे चलते हैं, इनकी डिटेल्स आप उन्हीं दिन की रिकॉर्डिंग से जाके सुन सकते हैं जिनको मिस हो गए। तो डे 4 में हमने 6 डिफरेंट टाइप्स देखी थी नापसंदीदा दिलों में से, जिसमें से अल कल्बुल गाफिल, गफलत वाले दिल, पता नहीं क्या कहाँ चोग खो गए, उनको किसी बात का असर ही नहीं होता। हाँ, फिर अल कल्बुल अगलफ, गिलाफों में लिपटे हुए दिल, कवर्ड हार्ट्स, पर्दे पड़े हैं जैसे शीशा और उसके ऊपर आप मोटा कपड़ा डाल दें। फिर अल कल्बुल ज़ायग, टेढ़े दिल, टेढ़ी सोच वाले, टेढ़ी आँख से देखने वाले, चीज़ों को गलत रुख से देखने वाले। और फिर अल कल्बुल मुरीब, रैब से, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल मुत्तकीन। तो मरीब कौन सा दिल होता है? जिसको हर वक्त शक की रहे, शक के बीमार, बीमारी है शक की, हर एक पे शक, ख़ास तौर पे अल्लाह के दीन पे शक। अब ये तो हो गए 20 वो दिल जिसका बराह रास्त तस्करा कुरान पाक में आता है, और इनके साथ साथ जहाँ आते हैं हम इस साल दौरे कुरान में किस तरीके से चलने वाले हैं, उसका तरीका यही होगा कि जहाँ जहाँ भी दिल की किसी कैफियत या हालत या दिल की किस्म का जिक्र होगा, वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया भी जाएगा। इसी तरह हर पारे में किसी एक दिल की बात डोमिनेंट होगी। अब थोड़ी सी चीज़ें आपको देना चाहती हूँ दिल की कैफियत के बारे में। दिल तो वो हो गए ना, एक तो चीज़ ही ऐसी है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्ती होती हैं, और ये ऐसा भी हो सकता है, मसलन जो अभी 20 टाइप पढ़ी है ना, उसमें से किसी एक की दिल की कैफियत, मिसाल देती हूँ अलकल्बुल कासी जो हमने पढ़ा, समझ लिया, सख्त दिल, लेकिन कभी कभी उसके दिल की कैफियत में टेढ़पन भी आ जाए। ऐसे ही बिल्कुल जैसे एक बीमारी होती है ना, तो फिर उसको दूसरी बीमारी भी लग जाती है, जैसे बुखार होता है तो साथ सर में दर्द भी हो जाता है ना, कभी डायरिया भी हो जाता है और उससे सर में दर्द है। तो कभी कभी कैफियत बदलती हैं, ये वक्ती भी होती हैं, और अगर इलाज ना किया जाए तो मुस्तकिल भी हो जाती हैं। इसको देखने से पहले कुरान पाक में दिल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, ज़रा सा उसका भी तारुफ ले लेते हैं। हमने रबिया कल्बी में एक पहले ही दिन की जो दुआ थी उसमें थोड़ा सा फ़र्क लिया था, समझा था, कोशिश भी की थी, लेकिन इस सीरीज़ में हमने इस पे बात नहीं की। और आप हैरान होंगे इस सारी बात को सुनते और पढ़ते वक्त कि अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान पाक में भी, और अहादीस से भी मिलता है, अरब लोग जो अरबिक लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनको तो ऑफ कोर्स इसके बारे में ज़्यादा शरह सदर होगा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने दिल के लफ्ज़ के लिए कुरान पाक में मुख्तलिफ इस्तेमाल किए लफ्ज़। उनमें से सबसे पहला लफ्ज़ क्या है आप देखिए कि आप उर्दू में कहते हैं ना दिल, पहले मैं उर्दू के मुतरादिफ़ात आपसे ही पूछती हूँ। दिल, जी, और क्या कहते हैं? मन, और क्या होता है दिल के लिए लफ्ज़ उर्दू में? सोचते जाएंगे आपके जहन में जवाब आता जाएगा ना। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह सुबहाना ताला ने दिलों के लिए अरबी ज़ुबान में मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल किए, और ये अरबी ज़ुबान की बहुत ही खूबसूरती है। तो नोट कीजिएगा, कल्ब लिखिए, कल्ब, फिर फुआद, फिर तीसरी किस्म है सदर, और चौथा लफ्ज़ है नफ्स। फ़र्क नोट कीजिएगा, बहुत ही यूनिक चीज़ है ये, रियली दिस इज़ द कलाम ऑफ अल्लाह सुबहाना ताला। और वाकई फिर अल्लाह के कलाम में जहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, वो वही होना था, हम उसको बदल नहीं सकते, और बदल देंगे ना तो मानी ही बदल जाता है। कल्ब का लफ्ज़ क्या है? मशहूर उज्व, यानी वेरी फेमस ऑर्गन, रूह और हयात का मंबा, यानी सोर्स ऑफ रूह, यानी जिंदगी। दिल जिंदा रहे तो बंदा जिंदा रहता है, जब दिल धड़कना बंद करता है ना, तो उसके बाद ही आपको पता है कि फिर कहते हैं कि आप बस वापसी का सफ़र शुरू हो गया। इसी तरह अक्ल, फहम, सोच और फिक्र, चार लफ्ज़ लिख लें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिल को अक़ल के लिए, फहम के लिए, सोच के लिए और फिक्र के लिए मुखातिब किया है। और आज भी डॉक्टर्स और तबीब जो बातें दिमाग के लिए बताते हैं ना, कुरान ने उनको दिल से रिलेट किया। बड़ी अहम बात कहने लगी हूँ। देखिए, दिल का भी एक दिमाग होता है, दिल के अंदर एक दिमाग होता है। तो अरबी ज़ुबान में कल्ब का लफ्ज़ दिल के साथ साथ दिमाग के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसकी दलील मौजूद है सूरत अल आराफ़ आयत 179, लहुम कुलूबुन, उनके दिल हैं लेकिन लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनके दिल तो हैं लेकिन इससे समझने की कोशिश नहीं करते। और आपको चार लफ्ज़ याद हैं कि तेरा तो दिल ही नहीं तेरे साथ, तेरा दिमाग काम करता है, ये हम बात कर चुके हैं पीछे पहले सेशन के साथ, ठीक है। तो कल्ब के लफ्ज़ को कल्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उलटता पुलटता है। लफ्ज़ उर्दू में इनकलाब, दिल ही तो बदलता है। उमर का दिल बदला, जान लेने गए थे और जान देने वालों में शामिल हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया। हिंदा का दिल बदल गया, तो पहले अल्लाह के नबी उसके लिए मबगूज थे, फिर महबूब हो गए, ठीक है। तो आज दुआ कीजिए मेरा दिल बदल दे। आगे चलिए, फुआद, फुआद जो फ़र्क आइन और बसर में होता है ना, आइन भी आँख को कहते हैं, बसर भी आँख को ही कहते हैं, या उजुन और समया में होता है, वही फ़र्क कल्ब और फुआद में भी है। कैसे? दलील लीजिए सूरत बनी इसराइल आयत 36, इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अनहु मसूला, बेशक कान, आँख और दिल इन सब जवारेख से ज़रूर बासपुरस होगी। बात समझ गया ना? यानी इन सब के लिए यहाँ लफ्ज़ फुआद है, तो जहाँ लफ्ज़ फुआद आएगा ना, वहाँ जज्बात होंगे। लिखे इमोशनल फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ भी कह लीजिए। अल्लाह ताला ने अक्ल, फहम, शऊर और तदब्बुर के लिए बराह रास्त कल्ब को मुखातिब किया है, और कल्ब के कई हिस्से होते हैं, जैसे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, कहीं मेमोरी होती है, कहीं थिंकिंग पावर होती है, इसी तरह कल्ब के भी मखसूस हिस्से होते हैं। अगर आपको मैं साइंस पढ़ा रही होती तो फौरन बताती दिल के चार हिस्से हैं, फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, सबको पता है, राइट लेफ्ट और इसी तरह से ऊपर नीचे के हैं। लेकिन कल्ब के अंदर मुख्तलिफ जो हिस्से हैं ना, उसमें जो जज्बात से टच करता है, इमोशंस, उसको फुआद कहते हैं। मेदे का जो मुंह होता है ना, बिल्कुल जो ऊपर का होता है, इसको फुआद कहते हैं, वजुल फुआद। और जो भुना हुआ गोश्त होता है ना, जिसको आप बारबेक्यू कहते हैं, उसके लिए आता है लफ्ज़ फादल लहम, गोश्त को आग पर भूनना। तो फुआद, इसकी जमा लिखिए अफ़ईदा, फादा से है ये लफ्ज़, लहमुन फ़ईदुन कहते हैं गोश्त पर भुने हुए, आग पर भुने हुए गोश्त को। इसी तरह से अल्फादु यदुल्लु अला हम्मम व शिद्दतुल हरारा, गरम गरम होता है ना जब गोश्त उतरता है आग से, तो इस लफ्ज़ को गर्मी और शदीद हरारत पर दलील देते हैं इसकी। तो फिर आसान जुमला बोल दूँ, जहाँ भी कुरान में इंसान के जज्बात की शिद्दत और उसकी तासीर का जिक्र आता है, तो वहाँ लफ्ज़ फुआद आता है ना अल्लाह का कलाम। मिसालें लीजिएगा, वसबहा फुआद उम्मी मूसा फारिगा, सूरत कसस में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, आयत 10 है, और मूसा की माँ का तो दिल ही खाली हो गया, बेकरार हो गई। उस वक्त की बात है जब उन्होंने बच्चे को दरिया में डाल दिया गम के मारे। फिर इसी तरह से मुहतीन मुखनई रूसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफ इदतुहुम हवा उन, लोग सर उठाए मैदाने कयामत की तरफ दौड़ रहे होंगे, इनकी निगाहें इनकी तरफ लौट न सकेंगी और इनके दिल खौफ के मारे उड़े जा रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों में जज्बात भी हैं, और जो अल्लाह ताला से फुआद से बासपुरस की बात है, लिखिए मेरी उन सारी प्यारी प्यारी बहनों के लिए जो बड़ी जज्बाती हैं, वेरी इमोशनल। फुआद से जो बासपुरस की बात की जा रही है ना कुरान में, तो जज्बात में आकर जो गुनाह करते हैं ना, उसका सवाल होगा। कितनों को समझ आ गई ये बात? या जज्बातियत में आकर कोई अच्छे काम करते हैं, उसका अजर भी मिल जाएगा। यानी बीइंग इमोशनल, जो हम कहते हैं क्या करें, खुशी में जज्बा ही बाहर उलट पड़ रहे हैं, नाचने ही लग गए, कपड़े ही उतार के फेंक दिए, खुशी इतनी हो गई। अल्लाह कहेगा कल तुम पीछे हो जाओ, मैं फुआद से पूछता हूँ। तो अपने जज्बात को काबू में रखिए। खुशियों के वक्त पे अगर आपने जज्बात को काबू में ना रखा, तो मिसाल पता क्या, कि दूध उबला तो आप चूल्हा ही ना बंद करें, बल्कि और आग तेज करें, देखो उबल रहा है ना। आज देखिए लोग यही कर रहे हैं। बहरहाल इससे आगे और कितनी बातें करूं। तीसरा लफ्ज है सदर, सीना, जमा है इसकी सुदूर, सीने के अंदर ही दिल होता है। वला किंतामल कुलूबुल्लतीफ़ सुदूर, लेकिन वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। तो कभी सिर्फ सुदूर या फिर सुदूर कहकर कुलूब ही मुराद होते हैं, जैसे शिफाउल लिमा फिस सुदूर, सूरत यूनुस की आयत 57 में आता है। अब चूंकि सदर का ताल्लुक ज़र्फ़े मकान से है, प्लेस, जगह, यानी केज, आप अपने लिए सोचिए, जैसे लालटेन का शीशा होता है ना उस चिराग के इर्द गिर्द, तो ये जो हमारी रिब्स है ना, पसलियाँ, ये है सदर, दिल के अराउंड की जगह। और ये सूरत नास तक पहुंचेंगे और सूरत कुल हुवल्लाह पे, तो आप देखेंगे कि शैतान को सिर्फ इर्द गिर्द घूमने की इजाजत है। जैसे कोई चोर किसी घर के बाहर के लॉन में घूमता रहे, लेकिन उसको अंदर का दरवाजा ना मिले। तो क्या पता चला, दिल की तंगी या फराही का जब जिक्र हो, तो फिर सदर का लफ्ज आता है। और नबी सल्लम के लिए सूरत हिजर आयत 97 में आता है, वलकद नालमु अन्नक यदीकु सदरुक सदरुक बिमा यकुलून, और हम जानते हैं कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है, यानी आपको घबराहट होती है, लेकिन कोई बात नहीं, सब्र कीजिए। और फेमस आयत आपकी, मेरी फेवरेट, अलम नशरह लक सदरुक, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया। ठीक है, तो शरह सदर हो या इन शराह सदर हो, कभी आपको शरह कल्ब नहीं मिलेगा लफ्ज़ कुरान में, कभी शरह अफीदा नहीं मिलेगा, तो सदर के साथ है। मतलब क्या होता है, किसी मुश्किल और पेचीदा मामले में दिल को सही बात सूझ जाए, इसको शरह सदर कहते हैं। फिर किसी चीज़ को छुपाने के लिए भी, चूंकि किसी ज़र्फ़ की ज़रूरत होती है ना, मसलन राज की बात का छुपाना, ख्यालात का छुपाना, वसवसे, तो जहाँ भी लफ्ज़ ख्यालात बात के छुपाने और वसवसास का जिक्र होगा ना, तो वहाँ लफ्ज़ सदर होगा। मसलन यालमु खाइनत अलायुनी वमा तुख्फिस सुदूर, वो आंखों की खयानत को भी जानता है और जो बातें दिलों में हैं इनको भी जानता है। फिर इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह सीनों की बातों को जानता है। और अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, ये तो सबको पता है। चौथा लफ्ज़ है नफ्स, लिखिए रूह, जिंदगी, जी और जान, ये चार लफ्ज़ नफ्स के अंदर है। रूह, जिंदगी, जी, जान, इसकी जमा होती है नफूस। ख्वाहिशात का मबदाओ मलजा, मबदा कहते हैं जहाँ से ख्वाहिशें फूटती हैं, दिल का वो हिस्सा जिधर से ख्वाहिशें फूटती हैं ना, जैसे पौधा निकलता है मिट्टी से, या मलजा, उसको नफ्स कहते हैं। आरजू करने वाला और खुश हो जाने वाला दिल मुराद होता है। जहाँ तक छुपी हुई बातों और ख्यालात को छुपाने का ताल्लुक है, तो ये सिफत नफूस में भी है और सुदूर में भी है। मसलन सूरत अल-अहज़ाब की आयत 37 है, वतुख्फी फी नफ्सी कमल्लाहु मुबदीही, तुम अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था। हज़रत जैद की बात है इसमें। ठीक है, ख्वाहिशात का ताल्लुक चूंकि नफ्स से होता है, वो अच्छी भी होती हैं तो बुरी भी। मसलन ई यत्तबेउ न इल्ला जन्न व मा तहवल अनफुस, फिर इस तरह खुश होने का ताल्लुक नफ्स से है, तो शौहर बीवी के ताल्लुक में क्या कहा हक महर के मामले में, सूरत निसा आयत 4, फाइन तेबना लकुम अन शय्यिन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनियम मरिया, कि अगर बीवियां अपनी खुशी से हक महर का कुछ हिस्सा छोड़ दें तो फिर मर्द ले सकता है। खुलासा क्या निकला सारी बात का अभी तक का? कल्ब अकल और शऊर, फहम और तदब्बुर का मंबा, फुआत जज्बात की शिद्दत का मरकज, सदर ज़र्फ तंगी और फराखी और बात छुपाने के लिए, और नफ्स ख्वाहिशात का मरकज़ खुश होने और बात छुपाने के लिए। तो ये तो हैं वो दिल के मुख्तलिफ मामले। अब एक आखिरी चीज़ जो इंशाल्लाह कल से आपको पारे के अंदर दी जाएगी, मैं सिर्फ उसका एक मिनट के अंदर गो थ्रू करा दूँ। दिल की किस्में तो पढ़ ली लेकिन हालतें बहुत सी हैं, जिसको आप कैफियात कल्ब कहते हैं। मसलन अल कल्बुल खाशे, अल कल्बुल लेजन, अल कल्बुल मगमूर, अल कल्बुल महसूर यानी हसरत, इसकी डिटेल सारी दौरे कुरान में आएगी इंशाल्लाह। अल कल्बुल मुनकर, अब आप लफ्ज़ अल कल्बिल को निकाल देना तो मैं इसको उर्दू में बोलूँगी कि दिल की कैफियत है कि कभी उस पर खशियत तारी होती है, कभी वो नरम हो जाता है, कभी वो मगमूर हो जाता है, गमरा कहते हैं डूबने को, कभी हसरतें होती हैं दिल में, फिर कभी वो दिल किसी चीज़ का इनकार कर देता है, कभी मोरताब हो जाता है, कभी दिल की कैफियत में रहम होता है, कभी राफत होती है रहीम और राउफ, कभी कभी दिल मसरूफ़ और निलहक होता है, हक से फिर जाता है, नहीं मानना मैं क्या करूं जो मर्जी कह लो, कभी दिल पे तबा यानी मोहर लग जाती है अलमतबू अलई, कभी कभी दिल मुकफल हो जाता है कुफल लग जाता है। अल्लाह ताला सूरत मोहम्मद में पूछते हैं अम अला कुलूबिहिम अक्फालुन, फिर इस तरह कभी कल्ब अल कवी राबितुल जाश हो जाते हैं। तो ये कैफियात है जो अभी आपको नहीं समझ आएंगी, इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे तो आएगी। इसी तरह दिल की कैफियात में मखनून, जैसे बंदिश नहीं हो जाती दिल में, फिर इस तरह जंग लग जाता है अल्लज़ी अलैहि रान, कभी दिल पे रोब तारी हो जाता है मरूबियत, कभी मुशमाइज इश, क्या लफ्ज़ है इश्माज़त क़ुलूबुल्लज़ीना, सूरह ज़ुमर की आयत 45 में हम इसको पढ़ेंगे। फिर कभी दिल कौन सा था अल्लज़ी ला यफ़क़हु, समझता ही नहीं है, कभी अक़ल नहीं इस्तेमाल करता अल-क़ल्बुल्लज़ी ला याक़िल। तो ये सब कुछ है हमारे पास, आप अपने आप से पूछिए मेरे दिल में क्या है। मा फ़ी क़ल्बी, किसी दूसरे की तो फ़िक्र ही नहीं है मुझे, मुझे तो अपनी फ़िक्र है। आपने मैंने क्या करना है, दिल की इस्लाह करनी है। देखिए ज़रा आपको एक पिक्चर दिख रही है, सुई धागे से दिल सीना है। करना चाहते हैं ये सारा ऑपरेशन, हथौड़ियाँ छैनियाँ धागे ये सब क्या है? इसमें कुछ तो कुरान की वायतें हैं जो डरावे वाली हैं, और कुछ हीलिंग है, शिफाउल लिमा फिस सुदूर। कुरान पढ़ते हुए आपको खुद फील होगा, खुद फील होगा कि कभी सुई धागे के साथ आपका दिल सिया जा रहा है, लोगों ने दिल तोड़ा था, अल्लाह ने कुरान की आयत से सिला दिया, कभी आप चोट भी महसूस करेंगे। तो बस इन चीज़ों को समझिएगा। इसी तरह दिल की किसी की हालत ताला लगा हुआ, ये है कल्बे मुखफल, ताले लगे हुए दिल हैं, खुलेंगे इंशाल्लाह, खुलना चाहते हैं? और कभी कभी बैंडेज भी लगेंगे। कहते हैं कि कुरान हील्स दा, कुरान हील करता है टूटे हुए दिल को और सख्त दिल को नरम करता है। फिर नेक्स्ट पे देखिए सिलाइयों के निशान मिल रहे हैं, ये सब कुछ होना है आपके मेरे साथ, आप रेडी हैं? फिर ये देखिए सुई धागे के साथ दिल टूटा है, लोगों से कहे तोड़ो मेरा दिल, मिल गया मुझे इलाज, और वो है दौरे कुरान जो मैंने सुनना है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो, बेहतरीन तरीके से काम ले। खुद से पूछिए पेट तो खाली करूंगी रोज़े में, दिल भी खाली करना है कि नहीं? तो जवाब क्या है? इंशाल्लाह हमने अपने दिल को खाली करना है हर उस चीज़ से जो हमें बोझल करती है। क्या इस वक्त मेरे दिल की कैफियत उस इंसान की तरह जो घड़ी पे नज़र लगा दे कि कल का वक्त कब आएगा? जज़ाकुमुल्लाह खैर, ज़िंदगी रही तो कल तक मिलेंगे। ये तकरीबन 21 घंटे और 50 मिनट, अभी से ही टाइमर लिख लें, 21 आवर 30 सेकेंड 30 मिनट के बाद आपने मैंने दोबारा आना है पहले पारे के साथ। इस दौरान जो मुमकिन तरीका है, अंसारुल्ला बन के मुहाजरीन को दावत दीजिए, प्यारे लोग नए लोगों को बुलाइए, असल वही हैं कुरान के ऑडियंस। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।